हरे कृष्ण। वैष्णव तिथि के अनुसार आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है। जन्माष्टमी उत्सव यानी वो दिन जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक एव निवसति, हमेशा गोलोक धाम जो परम वैकुंठ धाम है, जो हरेक जीव का चरम लक्ष्य है, जहां से हम पतित होकर उनकी नित्य सेवा को छोड़कर इस संसार में भटक कर अविद्या से आवृत होकर आ गए हैं, ऐसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए और उनको आकर्षित करने के लिए वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम इस संसार में आते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब है भगवान की असीम दया हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को जब वो हस्तिनापुर से वापस द्वारका जा रहे थे, कहती है कि प्रभु आपके अवतार का कारण क्या है, और अलग अलग कारण देती हैं। वो बहुत सुंदर से समझाती है, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं पूजनीय है हमेशा के लिए, हर जीव के लिए। कहती है किस लिए आप अवतरित होते हो, केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोहो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। केचिद, कुछ लोगों का कहना है, हालांकि प्रभु आपने तो गीता में हमेशा के लिए कह दिया है कि आपका आने का कारण क्या है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने अपनी अपने ही वचनों से आपने बता दिया है आपके यहां आने का कारण, वो तो है, पर फिर भी अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को प्रामुख्यता देकर कहते हैं कि ये मुख्य कारण था जिसके लिए भगवान अवतरित हुए। केचिद आहुः, कुछ लोग कहते हैं अजम जातम, अजम जिनका जन्म नहीं वो जन्म लिए। सारे विरोधास्पद चीज जो हैं परम सत्य में अच्छे तरह से सम्मिलित हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई मोटा है और पतला ऐसा एक साथ नहीं हो सकता, कोई लंबा है साथ साथ ही बहुत छोटा है ऐसा नहीं हो सकता। पर भगवान ही एक ऐसी चीज है, परम सत्य ही एक ऐसे सत्य है जहां सारे विरोधास्पद तत्व सम्मिलित हो जाते हैं बहुत ही हार्मोनियसली, बड़े सही तरह से, अनुकूल तरह से सम्मिलित हो जाते हैं। तो केचिद आहुर अजम जातम, वो अजम भगवान अज जो है उनका जन्म हुआ पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, केवल एक ही उद्देश्य से वो जन्म लिए अवतरित हुए, और वो क्या था, युधिष्ठिर महाराज को स्थापना करने के लिए, अपने ही लोगों को राज्य चलाने देने के लिए। क्योंकि भगवान भौतिक संसार की सृष्टि की है, उसका उद्देश्य क्या है, बद्ध जीवों को एक मौका देने के लिए सुधर कर वापस भगवत धाम आने के लिए। तो जो व्यक्ति इस तत्व को जानते हैं और अपना पूरा सर्वस्व अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में किस तरह से वो प्रेरित कर सके उनको भगवान की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के हेतु जब राज्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थापना करना चाहते हैं जिनके संरक्षण में हर एक बद्ध जीव जीवन का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो केचित आहुर अजम जाता, और इसीलिए भगवान ने सारी रचना की अलग अलग तरीके से लीला की ताकि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। और युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो केवल कृष्ण की इच्छा के लिए, उनको कोई इच्छा नहीं थी। वो तो कह रहे थे कि मेरे कारण ये सब इतने लोगों का सर्वनाश हो गया, मैं नहीं करना चाहता। पर कुछ लोग कहते हैं यदो हो प्रिय श्यान्म बाई, कुछ लोग कहते हैं कि यदुवंश में जन्म लिए यदुवंश का गुणगान करने के लिए, यदु जैसे महाराज शुद्ध भक्त जो हैं उनका गुणगान कर, यदो हो प्रियस्य अन्वाय उनका गुणगान करने के लिए। कैसे? मलयस्य एव चंदनम, मलयस्य एव चंदनम, चंदन हर जगह उगता है पर खास मलय पर्वत पर ज्यादा उगने के कारण मलयस्य एव चंदनम। तो मलय बड़ा प्रसिद्ध हो गया चंदन वहां उगने के कारण। इस तरह से भगवान कहीं भी जन्म ले सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं, कहीं भी स्वेच्छा से जन्म लेते हैं आत्म माया। पर खास करके यदुवंश, यदुकुल शिरोमणि, यदुकुल नंदन, यदुवीर, ये सब नाम से यदुवंश बड़ा यादव, कोई कहता है कि मैं यादव हूं, बड़े गर्व से कहता है कि कौन, अरे वो भगवान श्री कृष्ण जहां जन्म लिए, रघुवंश, रघुवंश का महाराज रघु उनका गुणगान करने के हेतु प्रभु रामचंद्र आए। और यदुवंश चंद्रवंश में सामने हम देखेंगे किस तरह जब अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए तो पूर्णिमा जैसा चांद चमक रहा था। बोले अष्टमी के दिन पूर्णिमा कैसे हो सकती है? बोले चंद्रमा सोच रहे थे मेरे वंश में आया है तो मैं पूरे तरह से उनका सेवा के लिए तैयार हो जाऊं, आधा नहीं। तो इसीलिए वो पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट कर रहे थे। तो यदो हो प्रियस्यान्म बाये मलयस्यैव चंदनम। फिर कहते हैं अपरे वसुदस देवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात अजस्तस्वय क्षेमाय वधाय। कुछ लोग कहते हैं अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। देवकी और वसुदेव बाद में चर्चा करेंगे जब भगवान का जन्म का प्रसंग आता है। वहां क्या तपस्या की है वो केवल भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कितने हजारों साल तक तपस्या की है, केवल कृष्ण भगवान हमारा पुत्र हो, भगवान जैसे एक पुत्र मिले। एक पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत क्या बोलते हैं तपस्या करना पड़ता, भगवान जैसे पुत्र तो कितना सुकृति होनी चाहिए, पुण्य होना चाहिए, उतना तपस्या होनी चाहिए। तो पिछले तीन जन्म पहले उन्होंने तपस्या किया था और हजारों साल केवल हवा और पत्ते खाकर, सूखे पत्ते जो गिरते थे खाकर तपस्या की। तो मतलब कृष्ण को जन्म देना हमारे हृदय में इतना आसान नहीं है। यदो हो प्रिय अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात। तो प्रश्नी और सुतपा प्रजापति दोनों ने तपस्या किया और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आप जैसे मुझे पुत्र चाहिए। बोले आप जैसे, कोई सवाल ही नहीं उठता, मेरे जैसे कोई हो, मेरे को ही आना पड़ेगा। असमोर्ध्व, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर नहीं है। भगवान भी गीता में कहते हैं कोई मेरे से परम सत्य और कुछ है ही नहीं, मैं ही आई एम द अल्टीमेट इन ट्रांसेंडेंस। परम सत्य का जो अंतिम शब्द है वो है कृष्ण। तो ठीक है, तीन बार मैं जन्म लूंगा और इसीलिए पहले बार पृश्नी गर्भ के रूप में, बाद में उपेंद्र वामन देव के रूप में, और अब याद दिलाए भगवान, वो भी सही है, याद दिलाए, बोले चतुर्भुज रूप में आए याद दिलाए, ताकि आपको गलतफहमी ना हो कि आपने दो ही बार आया फिर तीसरी बार आए नहीं, बोले नहीं याद दिला रहा हूं, दूसरी बार भी दो बार आ चुका हूं, तीसरी बार आ रहा हूं, और फिर उनके निवेदन पे अपना मूल स्वरूप को धारण किया। चतुर्भुज रूप से नहीं आते तो लगता था कोई बच्चा आ गया नीला रंग का, नहीं खास बताए याद दिलाए। तो अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भ्यगा, और फिर लोग कुछ कहते हैं, निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनके ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण करते। सूरत द्विषाम, सूर्य के प्रति जो द्वेष करते हैं, सूर्य के प्रति द्वेष करना मतलब भगवान से द्वेष करना ही, क्योंकि अगर भगवान से द्वेष करेंगे तो जो सूर्य मतलब क्या, जो भगवान के अनुयायी हैं उनसे द्वेष यानी भगवान से द्वेष, और भगवान से द्वेष यानी सब सुरों से द्वेष। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं भगवान से द्वेष नहीं करता, सुरों से द्वेष करता, भक्तों से द्वेष ऐसा हो नहीं सकता, भक्तों से द्वेष यानी भगवान से द्वेष, और नहीं मैं भक्तों को करता भगवान को नहीं मानता, ऐसा भी नहीं चलता। हूं नास्तिक व्यक्ति है और कहता है कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, इस भौतिक संसार में शायद ऐसे लोग भी रहते हैं, किसी को तकलीफ कुछ नहीं दूंगा, पर 100% मैं भगवान को नहीं मानता। एक बड़ा नेता था, उसने कहा पूरा 100% नास्तिक। कैसे? एक इंटरव्यू में उसने बताया, बोले एक बार मैं भगवान के सामने जाता था, कितना प्रार्थना किया कुछ नहीं किया, जो भी मांगा कुछ नहीं दिया, और एक दिन मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो देखा भगवान की मूर्ति के ऊपर एक चूहा जा रहा था, तब मेरा विश्वास उड़ गया। भगवान अपने अपने शरीर के ऊपर चूहा को नहीं भगा सकता है, दुनिया के सारे समस्या को क्या भगाएंगे। उस दिन मेरा पूरा विश्वास नष्ट हो गया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में दिया है उसने। लोग कहते हैं हाँ सही बात है भाई, भगवान की पिक्चर, वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, कोई कोई भगवान है अपने आप को कहता है, बोलते अपने सर के ऊपर बाल झड़ गया अपने आप को भगवान कहता है, बाल को नियंत्रण नहीं कर सकता ये सर को, वो पूरे ब्रह्मांड को क्या नियंत्रण करेगा। यही लॉजिक उपयोग करके वो कह रहा था कि भगवान के ऊपर मैंने देखा कि एक चूहा जा रहा था, अपने आप को संभालेंगे तो दूसरे को क्या संभालेंगे, पर मैं सबका सेवक हूं, पूरा दुनिया की मैं सेवा करना चाहता हूं। ये हो ही नहीं सकता, अंधा यथांधी उपनीयमान। मैं सोच रहा था अगले दिन उसको न्यूज़पेपर में भी एक लेटर लिखूं, अरे मूर्ख मां के ऊपर एक बच्चा आ जाएगा तो उसको उठा के फेंक देगी क्या वो? 84 लाख पिता हम अस्य जगतो माता धाता तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता, 84 लाख योनिया भगवान है, सबके पिता है वो, तो पिता के ऊपर बच्चा आके घूम रहा है उसको उठा के फेंक देना, तो संरक्षण क्या करेगा बच्चे को, क्या बच्चे के प्रति संरक्षण क्या जरूरत है। रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, एक चूहा एक बार वो दीप लगाया हुआ था भगवान के सामने, एक दीप लगाया हुआ था, तो दीप में घी लगाते हैं, वो घी खाने के लिए आया, वो जला हुआ दीप, वो जला हुआ दीप नहीं देखा, दीप लंबा था, वो नीचे सिर्फ घी देखा उसने, तो उसको जो क्या बोलते वात उसने चबा लिया, उसको चबा गया तो उसमें दांत में चिपक गया, निकल नहीं रहा है, तो ऐसा ऐसा घूम रहा, आरती हो गया भगवान का, इससे पहले कि वो आग उसको जला के भस्म कर दिया। जैसे भस्म किया चतुर्भुज स्वरूप हुआ, भगवत धाम गया, क्यों? मरते मरते अंतकाले च मामेव स्वरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयास। अंतकाल में मरते मरते उसने आरती किया भगवान का, कैसा किया नहीं मालूम, पर किया उसने, उसे नहीं मालूम, अज्ञात सकृति। तो ऐसे आ गया चूहा अगर आ गया, कभी कभी मैं हम लोग भगवान का गोपीनाथ मंदिर में हम लोग, मैं जब ये करता हूं क्या बोलते हैं, भगवान को माला चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते वक्त, चढ़ाने के बाद मैंने एक बार देखा उसके फूल के अंदर एक कीड़ा आ गया, और वो कीड़ा नित्यानंद, वो मैं निताय गौर का कर रहा था, नित्यानंद प्रभु के शरीर के ऊपर ऐसा ऐसा चलने लगा। मैं देखा नहीं था, इतना बड़ा फूल का हार था लगा दिया। फिर मैं बोला ऐसे निकालता हूं उसे, फिर सोचा बेचारा कहां का कीड़ा, कोई गंदे नाली में पड़ सकता था, पर फूल में आया, फूल के कृपा से, फूल से चिपके रहो। देखो भक्तों के साथ चिपके रहोगे तो भगवान के चरण में आ जाओगे। अगर ये कीड़ा गंदे नाली में होता, बुरे संग में होता, तो नाली में चला जाता और चूहे खाल देके मार दिए होते, पर क्योंकि ये फूलों का संग किया, नित्यानंद प्रभु के वक्षस्थल में आ गया। तो मैं दो निकालू कि नहीं निकालू, बेचारा आया हुआ है, मैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया, इसको असौभाग्य मिल गया है। उसको लग रहा है पहले फुटबॉल फील्ड पे चल रहा हो उसको, क्योंकि इतने बड़े वृक्ष बड़ा शरीर के ऊपर, पर नित्यानंद प्रभु के वक्षस्थल पे घूम रहा है। फिर भी मैं बोला ठीक है, अभी ड्यूटी वर्शिप के लिए अपर आवश्यकता, इसीलिए निकाला और उसको डिवोटी को बोला कि प्रेम से जाके कहीं छोड़ देना। तो इस तरह से उसका उद्धार हो गया उस चूहे का, भगवान के संपर्क में किसी तरीके से आए, द्वेष के तरीके भी अगर भगवान का, कंस भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपः येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, तो ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार होता है। तो चूहा आ गया, उसने देख क्या, जब ज्ञान नहीं होता है भगवान के बारे में सद्गुरु के द्वारा, ये ज्ञान नहीं होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो यही होता है, एक छोटी सी चीज देखे और अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास। तो क्षेमाय वधाय च सुरत द्विषाम, तो सुरत द्विष द्वेषी, कोई भी जीव से भी अगर हम द्वेष करेंगे, इसका मतलब पोटेंशियली हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, भले सुप्त अवस्था में हो पर वो द्वेष है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही विस्तृत स्वरूप है, उनकी शक्ति है, उनसे द्वेष नहीं भगवान से। तो ऐसा सूरत द्विषाम, सो उस द्वेष भाव जो स्थूल रूप से द्वेषी है उसको मार के उसका उद्धार करते हैं, और जो सूक्ष्म रूप से द्वेषी है उसको अंदर से धीरे धीरे सुधार के भगवान ऊपर लाते हैं। तो और कुछ लोग तो इस तरह से कहते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। और फिर कहती है भारावतारणाय अन्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मविभूत आत्मविभा भुवार्थितः भारावतारणाय अन्य, कुछ अन्य लोगों का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान के मूल रूप आरण का क्या आने का कारण क्या था, भारावतारणाय अन्य भुवो भूमि भूमि देवी को जब बहुत बोझा हो गया, नाव इव उदधौ, एक नाव अगर बहुत ओवरलोड कर देते, इंडिया में होता है, ट्रक को देखिए आप इतना ओवरलोड कर देते हैं, ट्रक ओवरलोड तो चलेगा अच्छा, अगर सड़क अच्छा है तो चलेगा, मतलब रोड अच्छा है तो एक तो ट्रक ओवरलोड, उसके ऊपर ये ड्राइवर भी ओवरलोड, तो फिर थोड़ा अगर सामने आ गया तो उसको दो बत्ती का चार बत्ती दिखता है, तो उसको लगता है कि दो गाड़ी एक साथ आ गया, मैं पूरा साइड में लूंगा, तो ऐसा चला जाता है वो पूरा। तो जब बोझा ज्यादा रहता है ना, थोड़ा थोड़ा भी धक्का लग गया तो गिर जाता है, या ये भी जब थोड़ा ज्यादा लिखे रहते, थोड़ा कोई छोटा बच्चा भी उसको धक्का मार दिया तो गिर जाता है। तो भुवो नाव इवो दधौ, इतना बोझा हो गया पृथ्वी माता के लिए कि वो सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं, मैं कहां कैसे, मैं पिछले बार हमने चर्चा किया इसको विस्तृत रूप से, किस प्रकार से बोझा बढ़ती है पृथ्वी माता का। तो सीदंत्या भूरि भारेण, बहुत ही डिस्ट्रेस्ड तकलीफ उठा रही थी वो, जातो ही आत्मविभू अर्थितः आत्मभू, आत्मभू यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान को कि भूमि देवी को बहुत बड़ा बोझा हो गया है, कृपया आप आइए और उसका उनका भार दूर कीजिए ऐसी सेनाओं से। 65% 65% टैक्स का जो इकट्ठा करते हैं अमेरिका में वो केवल मिलिट्री के लिए उपयोग करते हैं, एक अहंकार और दूसरा भय। अहंकार के हमारा पावर सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हम हैं, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को 65% जो टैक्स मिलते हैं उसका 65% केवल अपना शक्ति बनाने के लिए, मिलिट्री के लिए। तो बोझा नहीं होगा। तो सीजन जा तो ही जब भगवान इन्होंने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने, तब उस भार को दूर करने के लिए भगवान अवतरित हुए। भवेस्मिन् क्लिशमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुख्य कारण तो यह है आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। भवे अस्मिन् भव सागर में जो पड़ा हुआ है, क्लिश्यमानानाम, क्लिष्ट क्लिष्ट मतलब बहुत ही तकलीफ उठा रहे हैं इस संसार में, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम, क्यों उठा रहे हैं बोझा? अविद्या काम कर्म भी, अज्ञान के कारण। तो वो अज्ञान को दूर करने का एक ही तरीका है, श्रवण स्मरण अर्हण, श्रवण और कीर्तन, पूजन और स्मरण। तो ये जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, ये जो नव भक्ति है, नवदा भक्ति को स्थापित करने के लिए, ताकि ये जो तकलीफ उठा रहे हैं लोग, इस तकलीफ से बाहर आए भक्ति करके भगवान की, इसलिए आप आए। और अंत में कहती है कि मूल कारण क्या है आपके आने का, भले ये हो वो हो सब सही है, सब भी सही है, पर सचमुच में कारण यह है, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जन तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो पद परमं पदाम्बुजम्। के स एव पश्यन्ति, पश्यन्ति पश्यन्ति मतलब देखना, कौन देख सकता है भगवान को? तो एव पश्यन्ति, क्यों देखने की क्या जरूरत है? जो एक बार भगवान को देख लिया फिर से वो भव संसार को देखेगा नहीं। कुंती महारानी वही कहती है ना, हमें संकट दो प्रभु, क्योंकि संकट के दौरान हम स्मरण करते हैं, आपका दर्शन कर पाते हैं, और आपका स्मरण और दर्शन हो गया तो फिर से अपुनर्भव दर्शनम। एक खासियत है वैदिक धर्म में, खास करके वैष्णव सिद्धांत में, दूसरे कोई भी जो धर्म है वहां भगवान का अवतार हम नहीं सुनते। आप सोचिए, भगवान के पुत्र का आना हुआ और वो हमारे पाप के लिए मरे, ये क्रिश्चियनिटी का कहना है, पर उनसे पूछे भगवान कौन है, दिखते कैसे है? काल्पनिक रूप से वो बोलते हैं कि बूढ़ा आदमी है, लंबा दाढ़ी है, काल्पनिक है वो भी, मतलब वो भी कैसा किसी को नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि बहुत पुराना आदमी है, सबके बाप का बाप का बाप, प्रपितामह, जैसे हम ब्रह्मा जी को कभी कभी दिखाते हैं ना, बहुत ब्रह्मा जी का कोई भी, भीष्म पितामह या ब्रह्मा जी, ये दो जो ड्रामा करता है तो सबसे पहले सफेद दाढ़ी ढूंढना पड़ता है, ये लंबा दाढ़ी, इतना लंबा, बहुत पुराने, अनादिर आदि, पर आद्यम पुराण पुरुषम, पर नवयौवनम चाहिए किसी को नहीं मालूम, इसीलिए भगवान आते हैं। नहीं 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 नहीं, पुराण पुरुष हूं, सब बापों का बाप मैं ही हूं, पर बेटों के बेटे जैसा दिखता हूं, छोटा एकदम, चित्र एक एक भी देखेंगे आप कितने, कोई भक्त कल बोल रहे थे वो तो नंद महाराज और यशोदा के साथ कितना सुंदर है, कोई भी माता का हृदय पिघल जाएगा, सिर्फ जो वात्सल्य रस वाले हैं उनका देख के हृदय पिघल जाएगा, अरे कितना छोटा सा बच्चा, आप सोचिए, माँ बाप खड़े हैं, पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, गेट के पास खड़े हुए हैं, और माता उनके लिए डब्बा लाके देने वाली है। तब पिताजी को याद है, अरे अरे मैं तो चप्पल ही नहीं पहना। और एक छोटा सा बेटा आता है जूता सर पे उठा के, पापा आपका जूता। माँ देखती है, अरे अरे कितना मेरा नन्ना बच्चा, कितना प्रेम है बाप के प्रति। और बाप का भी हृदय पिघल जाता है, पिता का हृदय पिघल जाता है, अरे क्या सेवा भाव। और वो अगर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब वो एक बच्चे बनते हैं, उनसे अच्छा सुंदर, उनसे प्रेम को आकर्षित करने वाला, वात्सल्य को आकर्षित करने वाला और कौन हो सकता है। जब मित्र बनते हैं तो सबसे श्रेष्ठ मित्र, मतलब जो भी बनते हैं वो। जब भक्त बनते हैं तो उनसे बढ़कर कोई भक्त नहीं। चैतन्य महाप्रभु मुफ्त में सबको बांट देते, केवल आस्वादन नहीं करते, बांटते भी हैं। जो भी बनते हैं बेस्ट, और जब शत्रु बनते हैं बेस्ट एकदम, मतलब उसका सवाल ही नहीं उसको जीतने का। तो इतना ही नहीं, उसको सबसे ज्यादा फायदा भी होता है। ऐसा कोई शत्रु है मारने के बाद लॉटरी दे, तो ऐसा शत्रु भी है। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट एक एक पिक्चर 5 रस का होना चाहिए, तो वहां शांत रस, भगवान वृंदावन में बैठे हुए हैं, शांत रस, गाय है, हिरण है, और तोते हैं, और लताएं, वृक्ष, वो शांत रस। फिर दास्य रस, पहले तो भगवान अपने आप को, अर्जुन अपने आप को ये समझता था दास्य, कि मैं सखा हूं, पर जब भगवान ने अपना विश्वरूप किया तो बोले प्रभु आप महान हैं, मैं तुच्छ हूं, मैं आपका दास हूं। अपने आप को योग्य समझकर, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता महिमानं तवेदम, आपकी महिमा न जानते हुए मैं आपको सखा मान रहा था, तुरंत दास्य रस में आ गया। और ये हमारा मूल रस है, एक्चुअली मूल रस है दास्य रस। एक्चुअली सारे रसों में एक ही रस प्रामुख्य है, दास्य, सेवा का रस। और फिर है साख्य रस, कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ, गैयों के साथ निकल रहे हैं, और सारी गोपियां, एक्चुअली भागवत में एक एक बहुत सुंदर से वर्णन है। ये दृश्य जो है, नित्य नित्योत्सव, नित्योत्सव, भगवान को सिर्फ दर्शन करना उत्सव है, ये एक्चुअली उत्सव है। और फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस, सारे रस, रास बिहारी, भगवान का दूसरा नाम है रास बिहारी, रसिक शेखर। रसिक शेखर मतलब आनंद लेने में, सारे रसों का आस्वादन करने में कृष्ण बहुत ही दक्ष है, पूरे रस का पूर्ण रूप से आस्वादन लेते हैं। तो इस तरह से तयेव पश्यन्ति, भगवान के दर्शन करना, जिसने दर्शन किया फिर से दूसरा जो भव भव सागर का दर्शन फिर से उसका नहीं होगा। तो इसीलिए दर्शन करना जरूरी है, और दर्शन करना है तो आना चाहिए ना। दूसरे धर्मों में भगवान का फोटो ही नहीं है, फोटो नहीं है, हमारा फोटो है। क्यों? अरे आए देखो कैसे हो, वेणुकुणंतम, क्या पकड़े हुए हाथ में, अरविंद दला यताक्षम, आंख कैसे हैं, बरहावतम सम, और क्या डेकोरेशन है उनका, असिताम बुद सुंदरांगम, कहां लोगों को मालूम है ये सब, भगवान का कलर क्या है देखने में। असित अंबुद, 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 अंबु यानी पानी, अंबुद यानी बादल, अंबुद पानी देने वाले, पानी देने वाले कौन, बादल, और कैसे, असित, असित यानी थोड़े काले, भगवान काले, इस दुनिया में कोई काला है तो थोड़ा गोरा बनना चाहता है हर एक व्यक्ति, पर ये ऐसे काले नहीं है जैसे प्रभुपाद ने अफ्रीका में एक बार बोला, उसको अच्छा लगा एक आदमी को, बोला प्रभुपाद सो कृष्णा इज ब्लैक, हाँ ब्लैक बट नॉट लाइक यू, काले पर तेरे जैसे नहीं। इस दुनिया में काला मतलब, पर भगवान जो है उनका, सुखदेव गोस्वामी एक जगह भागवत में वर्णन करते हैं, बोले ये रंग मैं क्या उदाहरण दूं, किस चीज का उपमा दूं मैं, हर एक के अंदर कुछ कमियां हैं इस दुनिया में, पर अब क्या करूं, कुछ तो उदाहरण देना चाहिए, कुछ तो अगर उदाहरण देंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा ना, आपने कुछ देखा ही नहीं है। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था, मैं आपको एक शब्द बोलूं, ग्रेचका, समझ में आया क्या, क्या है वो? अरे वो राइस जैसा होता, अच्छा ऐसा होता, खाने का चीज, ओहो देखने में काला होता है, कैसा वो रागी होता है ना, रागी, रागी जैसा, अच्छा नाचनी जैसा होता, अच्छा तो नाचनी को देखा है, राइस को देखा है, आपने खाना खाया है, ये सब का उदाहरण दे दे के, अच्छा मतलब ऐसा राइस जैसा दिखता है, रंग उसका ऐसा है, वो खाने का चीज है, फेंकने का नहीं है, रखने का नहीं, ओके ओके ओके, धीरे 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 एक समझ में आता है। पर भगवान का जिसने दर्शन किया, मुखवत, नारद मुनि कहते हैं वो मुख बन जाता है, जैसा अगर एक गूंगे आदमी को कुछ तो देख के आ गया, चिल्ला रहा है वो, कुछ तो देखा, क्या देखा तू, कुछ को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलेगा, कुछ कुछ कर रहा है, भूत को देख के आ गया, भगवान को देखा, क्या देखा तू, समझ में नहीं आ रहा उसको, मुखवत जिसने भगवान का दर्शन किया पागल बन जाता है वो, फिर से देखने का इच्छा करता है, और कुछ चीज देखने की इच्छा नहीं, फिर से वही देखने का मुझे, पागल हो जाता है वो, पागल नहीं बने तो समझ लेना आपने देखा ही नहीं भगवान को। कभी कभी देखते सपने में भगवान आए थे, तेरा मन ने एक बनाया भगवान को। देखने का मतलब फिर से इस दुनिया में किसी चीज के अपुनर्भव दर्शन, फिर से किसी चीज की देखने की इच्छा नहीं होगी, ये देखने के बाद, ये रस का आस्वादन करने के बाद। तो कुछ ना कुछ तो उदाहरण देना पड़ता है, इसीलिए सबसे अच्छी चीज क्या है इस दुनिया में, कमल, कमल का देखो, कमल की पंखुड़िया कैसे होते, ऐसे उनके आंखें, ओ अच्छा हिरनी जैसे आंखें बोलते हैं ना कभी, आंखें बड़ी बड़ी ऐसे लंबे आंखें, आंख से लेकर कान तक ऐसे जाते, बड़े आंखें भगवान के। तो अरविंद ललायताक्षम बरहावतम सम, अब कुछ तो बोलना चाहिए, असिताम्बुद सुंगरांगम, काले कैसे काले, तमाल वृक्ष जैसे काले, बालल जैसे काले, कुछ तो एक चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा, 24.5 चंद्रमा, 24.5 मून, आंख चंद्रमा जैसे, हाथ पैर, बहुत सारे ऐसे वर्णन हुए हैं, उनका मुख, उनका एक एक शरीर का स्वरूप। तो इस तरह से एव पश्यंती, अगर पश्यंती कब देखेंगे, जब वो अवतरित होंगे, तो ये उनकी कृपा है, हम उस स्तर पर नहीं है कि भगवान का दर्शन कर पाए, इसीलिए भगवान कितने आए तो कम से कम पता तो लगा कि दिखने में कैसे हैं। और क्योंकि वो परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट, इसीलिए उनमें और उनके जो दूसरा स्वरूप है उसमें कोई अंतर नहीं है। कभी कभी हम लोग जब वृंदावन में जाते हैं, बद्रीनाथ में हम लोग एक बार गए थे, तो देखे तो एक भक्त ने राधानाथ स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा, बोले कैसा दिखते, समझ में ही नहीं आता है कौन सा, बड़े बड़े आंख है, अजीब अलग से दिखते ये। बोले नहीं कि ये जो है इसको भक्ति के आंखों से देखना पड़ेगा आपको, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना, जब तक हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान का आप दर्शन भी कर लो तो पहचान नहीं पाएंगे, द्वेष करके मार नहीं जाएंगे। मुकुंद ने यही तो कहा, मुकुंद के सामने जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए तो मुकुंद ने कहा, नहीं भगवान ने वो कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता, एक करोड़ साल तक तो देख नहीं सकता मुझे। फिर भगवान ने बुला लिया उसको, उसकी धीरज देखकर कि नहीं कम से कम 1 करोड़ जन्म के बाद देखूंगा ना चलेगा, वही उत्साह कि 1 करोड़ जन्म बस 1 ही करोड़ जन्म फिर मैं देखूंगा, तो उत्साह हो गया, उसको देखकर खत्म। बोले ये उत्साह, चलो बोला अभी बुला लो। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ टेस्टिंग किया था उसको, अभी नहीं देखो, सचमुच बोला था 1 करोड़ जन्म तक मैं नहीं देखूंगा। उसी मुख से मायावाद बोलता है, उसको प्रणाम करता है, उनका भी संग करता है, भक्तों के साथ आकर दांत में तृण लेकर गिरता है। बोले ऐसे ना कभी नहीं देखूंगा उसको। भगवान क्या अपनी योजना बदलते हैं? कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान अपनी योजना बदलते हैं? हां बदलते हैं, पर बदलते नहीं है। बदलते भी हैं, बदलते नहीं भी हैं। बोला प्रभु ऐसा कैसा? तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। एक कमांडर, मिलिट्री कमांडर एक सोल्जर को बोला था, एक सैनिक को बोला था, एक सैनिक इधर है 8x4 लंबा और चौड़ा और 4 फुट गहरा खड्डा खोद, इधर शाम तक पूरा खड्डा खोदना चाहिए। शाम तक खड्डा खोद गया, खोदने के बाद शाम को आया, साफ हो गया। मूर्ख, किसने बोला खड्डा खोदने के लिए? आपने? हाँ मैंने बोला, बंद करो इसको। रात भर बंद किया, फिर सुबह आया, सर हो गया, क्या हो गया? खड्डा इधर खोदने बोला, इधर खोला अभी पूरा। और शाम को आया तो बोले खड्डा किसने बोला? तेरे को अंदर डालूंगा, बंद बंद कर इसको। फिर इधर खो उधर खो, सुबह बोलता है खड्डा खोदो, रात को बोलता है बंद करो। तब बोलिए वो कमांडर क्या पागल हो गया है? पागल नहीं हुआ है, उसका योजना ऐसा लग रहा है बदल रहा है। कभी खड्डा खोदने को बोलता है, कभी भरने को बोलता है, नहीं उसका योजना एक ही चीज है, उसका योजना नहीं बदल रहा है। उसका योजना है तुम्हें सिखाने का हाउ डिसिप्लिन, आज्ञाकारी बनना है मिलिट्री में, पूछने का नहीं, पहले जो बोला करना, बाद में पूछो कहां क्या। ट्रेनिंग दिया था मिलिट्री में, ही ट्रेनिंग दिया था फायर, बाद में देखना किसको मार रहा हूं। सोचने का नहीं, बिकॉज एक बार सोच दे, अरे 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 ये मेरे भीष्म पिता, ये तो मेरे नाना है, ये मेरे काका है, कैसे मारो, वो नहीं। मिलिट्री में ट्रेनिंग दिया था पहले मारो, बाद में देखो किसको मार रहे। कमांडर की बात सुनने का बस, तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसका योजना नहीं बदल रहा है, पर बाहरी रूप से लग रहा है, कभी थप्पड़ मार रहा है, कभी थपथपा रहा है। तो भगवान की योजना समझ में नहीं आती हमें। प्रेम करते बोलते सुबह सुबह थप्पड़ मारते, शाम को बोलते बेटा सो जा कल सुबह देखेंगे। फिर बोले ऐसे कैसे, ये भगवान है कि पागल हो गए क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नहीं, उनका योजना बदलता नहीं है, उनका योजना एक ही है, सिर्फ समझने में हमारी कमी है। तो उस प्रेम का स्वरूप अलग अलग होता है। जिसको पूर्ण रूप से वो निष्ठा है, यानी उसने भगवान को देखा है, देखना मत, देखने से कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। सचमुच में देखा जाए तो भगवान को देखना मतलब कोई फायदा नहीं। दुर्योधन ने देखा, कंस ने देखा, जब तक हृदय में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, हृदय में जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर देख के भी क्या फायदा। देखने के बाद इमिटेशन करोगे, मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूं, बस कितना सुंदर दिखता है, मैं भी ऐसे दिखना चाहता हूं। तो तएव पश्यन्ति, अच्छा किस चीज को देखना? भगवान के चेहरे को नहीं, भगवान के चरण कमलों को। तावकम पदाम्बुजम, पद अंबुज, आपके चरण कमल का दर्शन। चरण कमल का दर्शन का मतलब क्या? भगवान की सेवा। ये नम्रता है, नम्रता पूर्वक जब आदमी भगवान के सामने आता है तो सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन। इसलिए हमें सिखाया जाता है दर्शन करना मतलब चरण कमलों से धीरे धीरे ऊपर। भगवान का दर्शन चरण कमलों से होना चाहिए पहले। अर्जुन और दुर्योधन भगवान से मिलने गए कुरुक्षेत्र के रणभूमि से पहले, उनके सेना को मांगने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। दुर्योधन जाके सर के पास खड़ा हो गया सीधा, जैसा उठेंगे मेरे को देखेंगे ऐसा सर के पास। अर्जुन नम्र होने के कारण पैर के पास जाके खड़ा हुआ और भगवान ने आंखें खोला। आंखें खोलते ही पहले आंखा खोलते ना, सामने जो दिखता है वो दिखता है, सर के ऊपर जो बैठा वो नहीं दिखता। तो भगवान ने बोला अर्जुन आया हो? अरे दुर्योधन तू भी? हाँ मैं भी आया, मैं पहले आया। किस लिए आए दोनों? बोले इसलिए, नहीं पहले मैं उसको देखा हूं। भगवान भी बहुत होशियार है भाई, इसको पहले मैंने देखा, और ये छोटा है ना, छोटों को पहले दे दे। दो का जब झगड़ा होता है तो बोले ये छोटा है दे देना इसको पहले, पहले दे दे, तेरे को बाद में दूंगा ना, दूसरा खरीद के दूंगा। अर्जुन छोटा है, पहले उसको मांगने दो। तो नम्रता ये स्वरूप है भक्तों का, वो जाके खड़ा हो गया वहां। तो एव पश्यंती तावकम पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का दर्शन। और क्यों? भव प्रवाह उपरमम। क्यों भगवान के चरण कमलों के दर्शन के लालुक लालायित होना चाहिए हमें? क्योंकि जिसने एक बार भगवान के चरण कमल का दर्शन किया, चरण कमल यानी नमा ओम विष्णु पादाय, हम लोग बोलते हैं ना गुरु को, गुरु की वंदना करते वक्त हम कम से कम गौड़ी वैष्णव में नमः ओम विष्णु पादाय। भगवान के चरण कमलों में स्थित होना मतलब भगवान की सेवा में 24 घंटे स्थित होना, यानी अपना वैयक्तिक जीवन कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी भगवान की सेवा में, यद करोशी यद अश्नासी यद जुहोशी, वो व्यक्ति हमेशा भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर रहा है। इन एन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, परम सत्य के स्तर पर भगवान की सेवा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक जगह प्रभुपाद जी कहते जो एकदम नौसुखिया भक्त है उन लोगों के लिए यह सेवा दी जाती है। धीरे 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 सेवा करके 100% जब शुद्ध हो गए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी खोता नहीं हूं और वो कभी नहीं खोते हैं मेरे लिए, ऐसा व्यक्ति 100% 24 घंटे दर्शन करता रहता है। और वो जब भ्रमण करता है, वृंदावन को छोड़ के जाता है, तो वो जाता है दूसरों को दर्शन कराने के लिए, दूसरों को सेवा में लगाने के लिए। ये थे श्रील प्रभुपाद। ये इतने सारे पेंटिंग में सोच रहा था कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं, वहां कौन से लगाऊं, प्रभुपाद जी के बगल में कौन सा लगा, बोले दोनों वृंदावन वाले लगाएंगे, कृष्ण वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, महाप्रभु या कृष्ण जो है वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। इसी तरह से प्रभुपाद जी कभी वृंदावन को छोड़े नहीं, क्योंकि हृदय में ले गए, पर पूरे विश्व को उन्होंने वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कराया। गए अमेरिका पर वृंदावन को साथ में ले गए और दूसरों को वृंदावन में प्रवेश दिलाया। केवल ऐसा व्यक्ति भ्रमण कर सकता है। ऑफ कोर्स उस समय में उनकी जो सेवा होती है, महान आचार्य जो है षड गोस्वामी के हर एक विग्रह थे, उस समय वो विग्रह की सेवा जो है वो पूरे अलग स्तर पर है। अभी हमारा वो उस स्तर पर नहीं है। कभी कभी हम लोग भगवान के सामने अच्छे तरह से आते हैं, कभी कभी अपराध कर बैठते हैं, कभी कुछ भी, पर फिर भी किसी ना किसी तरह से गुरु की कृपा से हमको ये सेवा मिल रहा है। तो ये सेवा जो है करते रहेंगे तो भव प्रवाह उपरमम, भव प्रवाह से पार कर जाएंगे। तो कैसे? बोले कौन व्यक्ति भगवान के चरण कमल का दर्शन कर सकता है, दर्शन का लाभ उठा सकता है। भव प्रवाह जो हृदय में लहरें, कभी काम की लहरें, कभी समुद्र के सामने जाइए, समुद्र के सामने जाके खड़े होइए, ऐसे लहरें, एक एक लाट आता है, फाट थप्पड़ मार के गिरा देता है नीचे, फिर उठा और एक, फिर उठा और एक, समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं है। इसी तरह से भव प्रवाह, कभी काम का, कभी क्रोध का, लोभ मोह मद मत्सर, एक के बाद एक। कभी हमको लगता है कि ये लाट को मैंने कभी नीचे से गया, ऊपर से छलांग मार दिया तो दूसरा आ रहा है उधर, आदमी थक जाता है बाद में। पहले पहले तलवार लेके जाता है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, बाद में बोलता है अरे तू कब खत्म ही नहीं होने वाला, थक जाता है थोड़े एक घंटे के बाद, लड़ लड़ के थक जाता है, बाद में बोलता है अभी बस जो होना होने दो। तो इस तरह से करोड़ों जन्मों से हम लड़ रहे हैं पर हमारी ओर से नहीं होगा। पर जब हम शरण जाते, कैसे शरण जाना, कैसे शरण जाएंगे भगवान की, तो यह पहले जो इसमें यहां बता रहे हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तव इहि तं जनाः। बोले यही एक तरीका है। सबसे पहले लिखती है कुंती देवी, कहती है शृण्वन्ति, सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण करना। सुनेंगे नहीं तो किसका कीर्तन करेंगे, किसका भजन करेंगे, श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण, श्रृणवंती, क्योंकि सुनने के बाद सब समझ में आता है। भगवान को भी जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक अगर भगवान आ भी गए देख भी लेंगे तो पहचानेंगे नहीं, पर अगर सुने हैं नहीं भी हैं फिर भी प्रेम बढ़ जाता है। किसी को देखे बिना प्रेम होना बड़ा मुश्किल है, पर अगर बार बार उसके बारे में सुनते रहेंगे, अरे वो ऐसा है, अरे देखने में इतना सुंदर है, कितने अच्छे गुण है उसके, अच्छा कौन है वो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है, अरे बदल दी। मथुरा की जो यज्ञ पत्नी थी, ब्राह्मणों की पत्नी, भगवान के प्रति कैसा प्रेम हो गया, कभी उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था, पर ब्रजवासियां जो वो सब्जी वब्जी बेचने वाली वो आती थी सब्जी बेचते बेचते बातचीत करते, बोलो आज ऐसा हो गया, आज कृष्ण ने ऐसा किया, उधर गया, उन लोगों का हमेशा बात गांव में क्या हुआ, सब दूसरी जगह बातचीत करना, तो सब्जी बेचते, पर कृष्ण की भक्त थे वो, हमेशा बोलते रहते। और याज्ञिक ब्राह्मणों ने, याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना था, किससे सुना था, कृष्ण के प्रेमियों से कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे तो कृष्ण का प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है बिना देखे। रुक्मिणी देवी को कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया इतना कि जान देने के लिए तैयार थी, वो देखी नहीं थी कभी, पर नारद मुनि से सुनी थी, महान संत उनकी सेवा की थी, वो उनसे सुनी थी, वो ये भी एक सेवा है, श्रवणम सेवा, सबसे पहले उनकी सेवा कैसा करना है वो भी सुनना चाहिए हमको। तो सुन सुन के प्रेम हो गया था रुक्मिणी देवी को, तभी उन्होंने लिखा कि नहीं कृपया मुझे बताइए, शिशुपाल जैसे व्यक्ति से बचाइए, मैं नहीं चाहती, रुक्मी मेरा तथाकथित भाई है और मुझे सियारों के बीच में भेज रहा है, जो शेर का जो भाग है उस सियारों के बीच में वो फेंक रहा है। मालूम था, रुक्मी को मालूम था, और रुक्मी क्यों इतना बदल गया, भीष्मक महाराज ऐसे नहीं थे, रुक्मी क्यों ऐसा बदल गया, क्योंकि संग के कारण। भौमासुर भगवान का पुत्र, जरासंध के संग के कारण बदल गया हो, इतना द्वेष, और जब आप द्वेष करते हो ना, दूसरा द्वेषी के साथ दोस्ती अच्छा जुड़ता है, क्योंकि दोनों में तू भी द्वेषी मैं भी द्वेषी, दोनों एक ही दुश्मन ना हमारा, दोस्ती ज्यादा बढ़ जाता है स्वाभाविक रूप से, आपके हृदय में जैसा होगा ऐसे लोग के साथ दोस्ती बढ़ेगी आपकी, जैसा इच्छा होगा वैसे भगवान आकर्षित करेंगे। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी देवी के संग में होकर, इतने महान भक्त भीष्मक महाराज के संग में होकर रुक्मी क्यों बिगड़ गया, शिशुपाल के साथ उसका जिगरी दोस्ती, प्राण देने के लिए, मेरे सबसे प्राण से भी ज्यादा प्रिय रुक्मिणी तेरे को सौंपूंगा, रुक्मिणी बेचारी क्या करेगी, वो बड़ा भाई है, दादागिरी करके उसने भीष्मक महाराज को भी कन्विंस करा दिया, रुक्मिणी देवी का हृदय नहीं था, उन्होंने बोला मेरा सर्वस्व कृष्ण के लिए, मैंने सुना है कृष्ण भगवान द्वारका में एक बार चिढ़ाते हैं, जब रुक्मिणी देवी के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, उसके बाद एक बार कृष्ण भगवान सोते ऐसे आराम से लेटे रहते, चिढ़ाते थोड़ा रुक्मिणी को, थोड़ा गुस्सा, रुक्मिणी बहुत शांत स्वभाव की, उसको थोड़ा गुस्सा देना, रुक्मिणी तूने शायद गलती की, मेरे जैसे व्यक्ति से शादी कर ली, कितने लोग तेरे पीछे पड़े हुए थे, शिशुपाल जैसे पड़े पड़े रहा, और मैं मेरे बाप कौन है मां कौन है किसी को नहीं मालूम, वो भी कॉन्ट्रोवर्सी आज तक, ये वसुदेव का बच्चा है, ये नंद महाराज का बच्चा है, खच्चा कौन है वो भी नहीं मालूम, और मैं ग्वाल बाल, तेरे पीछे कितने महान राजा लोग, अब भी तू चाहे ना सोच ले, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा, जा सकती है तो 10, अभी समय नहीं है, कभी उसके उसके ऊपर एक अलग ही चर्चा हो जाएगा, 10 कारण देते हैं भगवान कि तूने गलत चॉइस किया रे, बहुत गलती कर दी तू, अभी भी सोच ले, और रुक्मिणी देवी एक एक आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले तो उसके हाथ से चामर हिलने लगा कि सचमुच में क्या बोल रहे, चले तो नहीं जाएंगे, बेहोश हो गई, गुस्सा नहीं हुई, बेहोश हो गई। यही अंतर है सत्यभामा में और रुक्मिणी में। रस का आस्वादन हर एक का अपना अपना रस होता है। कभी कभी हम भक्त देखते हैं किसी को गुस्सा आया रोना शुरू कर देते, या एक जगह कोने में जाके बैठ जाना बस। किसी को गुस्सा आया तो साक्षात शिव जी भी सामने आ जाए तो उनको भी छुला देते हो, देवी का स्वरूप। हमारे भक्ति गुरुकुल महाराज का नाम क्या, भक्ति विद्यापूर्ण महाराज, भक्ति विद्यापूर्ण महाराज बोले आपने देखा है एक चंडी ऐसा जा रही है और शिव जी लेटे हुए हैं उसके ऊपर पैर रखी हुई देवी। तो बोले आपने ये पिक्चर देखा, हाँ दिस इज बोनाफाइड। अच्छा ये दिखाना चाहते हैं, शिव जी जब गुस्सा होते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, सबको सोंस कर देते हैं, पर शिव जी से भी ज्यादा देवी का गुस्सा। बोले जब देवी गुस्सा हो जाती है एनीथिंग दैट इज वर्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जो कोई भी जो सीधा खड़ा है ना सब उल्टा हो जाता है, ये देवी की शक्ति है। देवियों की शक्ति। जो भी सीधा सब उल्टा, यहां तक कि शिव जी बोलते अरे 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 लेट जाता हूं मेरे, फिर पैर रखिए तो बाद में, अच्छा ठीक है शांत हो जा शांत हो जा। तो ये अलग भावना है, सत्यभामा का मूड अलग है। जगदानंद पंडित ऐसे ही थे, महाप्रभु आपके लिए मैं तेल आया फर्स्ट क्लास तेल, इसको 2 महीने लगे तेल निकालने में। तेल सन्यासी, मैं सन्यासी को तेल कभी नहीं लगाना, नहीं लेंगे नहीं ले नहीं, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ को नहीं चाहिए, मेरे को तेल भी नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं कुछ नहीं। 3 दिन खाना पीना बंद, महाप्रभु बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है खाना बंद, मेरे लिए प्रसाद बनाओ। तो ये सत्यभामा जी का मूड है, वो भी अलग रस है। और रुक्मिणी का मूड सचमुच में आप बोल रहे हो, चामर हिल गया बेहोश हो गया, अरे नहीं मैं तुमको थोड़ा गुस्सा, थोड़ा तुम्हारे गुस्सा देखने में आनंद आता था इसलिए थोड़ा गुस्सा दिला रहा था मैं, ऐसा नहीं है। और फिर रुक्मिणी देवी एक एक पॉइंट को लेती है, वो जो जो भगवान ने बोला ना एक एक को भी लेती है। भागवत आप पढ़ेंगे एक एक को भी शास्त्रिक तरीके से उसको स्मैश करती, एक एक पॉइंट को भी। बोले आपसे क्यों मैंने प्रेम किया शिशुपाल, ये भी कोई चॉइस है? मल मूत्र और इस सब चीज से बना हुआ एक थैली, उसके ऊपर थोड़ा बाल, एक गोनी के गोनी में मल मूत्र सब डाल के उसके ऊपर थोड़ा बाल चिपका के एक विग डाल के अगर प्रस्तुत करे तो कोई लेगा उसको गले लगाएगा? वो कहां और आप कहां प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप? एक एक आर्ग्यूमेंट देती है। भगवान एकदम, भगवान का अगर भगवान के हाथ में चामर होता तो वो भी गिर जाता। बोले बाप रे अब समझ गया। तो ऐसी रुक्मिणी इतनी साक्षात लक्ष्मी जी, और उसको शिशुपाल केवल कृष्ण के द्वेष से, बोला मैं शिशुपाल कृष्ण के द्वेष से, बोले शिशुपाल से इसका विवाह कराऊंगा। और तब रुक्मिणी जी लिखती है कैसे रुक्मिणी देवी का प्रेम कैसे हुआ, क्योंकि उसने श्रवणम श्रृण्वंती श्रृण्वंती गायंती, और हमेशा उनका गुणगान, उनके मुख से जो भी निकलता था केवल भगवान और भगवान से संबंधित चीजें। श्रृण्वंती गायंती गृणंती मतलब स्वीकार करना, अभीक्ष्णशः अभीक्ष्णशः मतलब सततम लगातार, अभीक्ष्णशः स्मरंती जिसका आप बार बार सुनोगे, जिसका आप बार बार कीर्तन करोगे, जिसका बार बार आप स्मरण करोगे, निश्चित रूप से जिसका बार बार आप उसको जिसको स्वीकार करोगे उसके उसका स्मरण आपके हृदय में गाढ़ा हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। इसीलिए साधारणतः जो भी हम लोग ऐसा एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं, मंदिर मतलब क्या, मंदिर मतलब धाम, एक ऐसा स्थान जहां भगवान का स्मरण हो, इसे एक डालने का मतलब यही है। भगवान प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन का मतलब क्या, वृंदावन जाते ही वहां हमेशा कृष्ण का स्मरण, कोई ना कोई किसको भी लो, हरे कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। कोई भी चीज देखो तो स्मरण होता है, वो धाम है। धाम मतलब जहां हमेशा कृष्ण का स्मरण होने के लिए अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति हो, कृष्ण का स्वाभाविक रूप से जहां स्मरण हो वो जगह धाम है। तो जिस एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां वो अनुकूल वातावरण है, जहां सब लोग, जहां आने के बाद स्वाभाविक रूप से कृष्ण का स्मरण हो, वहां कृष्ण अपने स्मरण के रूप में मौजूद हो जाते हैं, स्मृति के रूप में, क्योंकि भगवान के स्मरण करने से उनसे अभिन्न है। तो स्मरंती और नंदंती, नंदंती मतलब दूसरों को श्रवण कीर्तन गायन करते हुए देखकर आनंद लेना। कौन ऐसा ले सकता है जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है? नहीं तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है तो हमको ईर्ष्या हो। कोई अगर श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से कुछ हो रहा है, देखकर आनंद लेना, ना कि सोचना कि अरे मैं अगर वो करूंगा तो अच्छा होता, इतना सुंदर आइटम। जैसे आप देखेंगे प्रभुपाद, प्रभुपाद जब देखे कि इतना सारा आइटम आज भगवान के लिए बना है, आनंद इसलिए नहीं कौन सा आइटम मेरे पैलेट में आएगा बाद में, नहीं कि भगवान इतने ग्रहण किए। जैसे महाप्रभु आए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आधा कमरा पूरा भर दिया था प्रसाद से, भोग से। महाप्रभु देखे, वाह बहुत अच्छी बात है, आपने जगन्नाथ जी को इतना लगाया। बोले आपके लिए है ये, जगन्नाथ जी आ लिए हो या आपके लिए है? बोले मेरे लिए नहीं, मेरे को एक शाक और वो थोड़ा कुछ साइड में दो, ये सब बहुत अच्छा आपने लगाया। तो आनंद लेना, दूसरों को भगवान की सेवा में लगते हुए देखकर आनंद लेना, ये एक्चुअली ये जो है ये एक भक्त का लक्षण है। और ये इसीलिए गुरु कहते हैं ना, श्रीरा निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यै यायालिभिर युक्तिरपेक्षणे तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य। दूसरों को ये सेवा में लगते देखकर आनंद लेना, ये एक गुरु का लक्षण है। और देखिए, हम देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने क्या दिया हमें, सबसे बड़ा योगदान क्या है प्रभुपाद जी का? रूपा जी का सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने हमें कनेक्शन दिया कृष्णा के साथ। कैसे? श्रृण्वंती गायंती गृणंती स्मरंती अभीक्ष्णशः, एक ऐसा फैसिलिटी हमें प्रदान किया है जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा में लग सकते हैं। कई साल पहले का मैं एक कैसेट सुन रहा था, वहां राधानाथ महाराज जी प्रवचन दे रहे थे जन्माष्टमी के दिन, और उन्होंने शुरू सबसे शुरू में ये जन्माष्टमी का प्रवचन शुरू करते हुए भागवत में उन्होंने कहा था कि हम क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं, मतलब यथाशक्ति पूरी शक्ति के साथ हमको मनाना चाहिए इन उत्सवों को, खास करके बोले जन्माष्टमी महोत्सव। बोले क्यों? पहला, भगवान को प्रसन्न करना। अंततः हम जो भी कर रहे हैं इसका उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न हो। वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेन पर पुमान विष्णुर आराध्यते पंता न अन्य तत्तोष कारण। जो भी हम कर रहे हैं इसका परिपूर्णता क्या है? जब भगवान प्रसन्न हो। तो एक हम कर रहे हैं अच्छे तरह, जितना अपनी यथा पूरी शक्ति के साथ करेंगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने का मुख्य हेतु। दूसरा, अपना कृतज्ञता प्रकट करना कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आप आते नहीं तो हमारा क्या होता, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो कैमोने धोरिताम दे राधार मोहिमा प्रेमो रस सीमा जगते जाना तो के। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आए होते तबे की हो तो क्या हुआ होता हमारा, कैमोने धरिताम दे, मैं कैसे देखो कैसा रह पाता मैं, राधा की महिमा प्रेम रस की जो सीमा है पूरी दुनिया को कैसे मालूम होता। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बांटने आए हैं, कृष्ण दर्शन करने, दर्शन देने और आस्वादन करने आए हैं। अगर वो आते नहीं तो कैसे मालूम होता लोगों को कि सर्वोच्च रस क्या है, उस रस का आस्वादन कैसे करें। तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है, जब कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, प्रेम दिखाना चाहते हैं, हमारा प्रेम अगर किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो प्रेम का दर्शन है कि मेरी जितनी शक्ति है वो पूरे उसको मैं उसे एक ऐसा एक उपहार दूं, यथाशक्ति। अगर एक करोड़पति है और वो किसी एक स्त्री से प्रेम करता है और उसको कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूं और तेरे लिए एक ये अंगूठी एल्यूमिनियम का, इतना ही प्रेम है तेरा मेरे ऊपर, करोड़ रुपया है तेरे पास और एक एल्यूमिनियम का अंगूठी दे रहा है मुझे, करो मतलब कुछ 9 लाख का कुछ ला के दूंगा 9 लाख खा। तो प्रेम है तो सबसे बेस्ट चीज जो मेरे पास है वो मैं प्रयास दूंगा, मानस देह गेह जो कि छुमोर और पिलूं तुआ पदे नंद किशोर, एक प्रेम का लक्षण है। तो सचमुच में अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको कुछ भेंट नहीं दे सकते हम लोग, नहीं देंगे तो कैसा जन्म, कैसा प्रेम है ये, सिर्फ मुंह से बोल रहे हृदय से कुछ प्रेम नहीं है। तो ये प्रेम का लक्षण। और अरे भक्ति में प्रगति करने के लिए अगर प्रेम नहीं भी हो, बोले प्रभु जी उतना सचमुच में प्रेम नहीं है, मैं बड़ा फ्रैंक आदमी हूं जो अंदर से बाहर, जितना प्रेम है उतना ही करूंगा, हा? 16 माला कर रहा हूं ना वो काफी है बस, नहीं। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं 64 अंगों के भक्ति का एक अंग है ये उत्सव, खास करके जन्माष्टमी, रूपा जी लिखते हैं तात्पर्य स्पेशली जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा स्पेशल फेस्टिवल्स, ही सेड यू शुड ऑब्जर्व इट योर फुल कैपेसिटी, अपना पूरा ताकत लगा के सेलिब्रेट करना चाहिए उसको, दिन रात एक करना चाहिए, वो प्रेम का लक्षण है। और उससे उनको फायदा नहीं हमें फायदा मिलेगा, जितना हम देंगे उतना वापस में मिलेगा हमको। कितने हम लोग मूर्ख हैं, जितने हम देंगे उसका करोड़ गुना मिलने वाला है, फिर उसमें लाभ, उसमें आलस क्यों। मनुष्य जीवन मतलब क्या, थोड़ा बहुत समय और थोड़ा बहुत शक्ति, उस शक्ति कितना दिन तक रहेगा, उस समय कितना तक हमको नहीं मालूम, पर जो शक्ति है और जो कुछ समय है, खास करके ऐसे पवित्र दिनों में जहां कृपा बहती है, वैसे भी धारा बहती है, पर ऐसे दिन भंडार के रूप में आता है। पर ये सब लेक्चर में मैंने कई बार सुना है, मैंने खुद बोला है, पर सचमुच में बोलूं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, मेरे हृदय में भी वो प्रेम नहीं है। पर क्या ये क्या दिखावट है फिर, नहीं दिखाना चाहिए उनको बहुत प्रेम है, बहुत उत्साह है, प्रभु ये दिस इज हिपोक्रेसी, दाम्भिकता है, कुछ प्रेम नहीं है बाहर से दिखाना, ऐसा है कि नहीं। अगर हृदय में नहीं है बाहर दिखा रहे, कौन है वो दाम्भिक आदमी, दाम्भिकता है। तो किसी एक भक्त ने एक बार पूछा एक सन्यासी से, बोला महाराज आपने बोला दाम्भिकता नहीं होना चाहिए, प्रेम नहीं दिखाने का नहीं, बहुत ज्यादा प्रेम है दिखाने का नहीं, उत्साह दिखाने का नहीं। बोले नहीं, कुछ चीजें नहीं भी हो तो दिखाओ, अगर दिखाते रहोगे धीरे धीरे आ जाएगा। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते थे उत्साह नहीं भी है तो उत्साह दिखाओ। दो चीज बड़ा कंटीजियस, कंटीजियस को क्या बोलते हैं, संसर्ग जनिक, संसर्ग जन्य, दो चीज बड़ा संसर्ग जन्य है, एक बहुत संसर्ग जन्य है, आप एकदम 8 घंटा सोए हो एकदम फ्रेश उठे हो पर सामने वाला अपने आप मुंह खुलता है हमारा, बहुत संसर्गजन्य। और दूसरा है उत्साह। आपको आलस्य बनना है ना तो उत्साही के बगल में मत जाना कभी, बड़ा संसर्गजन्य है, लग जाता है, कुछ तो लग जाता है असर। बोले ये दिखावट भी चलेगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इफ यू आर नॉट एंथुजियास्टिक एक्ट एंथुजियास्टिक। ऑफ कोर्स सचमुच में उत्साह का मतलब क्या, इधर से उधर छलांग मारना उत्साह नहीं, ठीक है वो भी एक प्रकार का उत्साह है। सचमुच उत्साह है स्टेडीनेस, स्थिरता। अच्छा हो या बुरा हो, ठंडी हो या गर्मी हो, मान हो या अपमान हो, शीत हो या उष्ण हो, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, स्थिरता से मैं भक्ति करता रहूंगा क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं जीवन में। तो ये सच्चा उत्साह कि यथाशक्ति मैं पूर्ण रूप से जितना हो सके वो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, मेरे कृष्ण का जन्मदिन है ये। तो बोले ये एक कारण है। और दूसरा, जिस तरह से उत्साह के साथ और प्रेम के साथ हम मनाएंगे इस भक्तों का उत्साह और भक्तों की रुचि बढ़ती है। हर एक व्यक्ति जितना आप अपना उत्साह जितना तीव्र अच्छी तरह से मनाएंगे इन उत्सवों को, उतना हर एक भक्त का उत्साह और हर एक भक्त का जो रुचि है कृष्ण के प्रति, भक्ति के प्रति, वो बढ़ेगी। और ये एक मौका है, ये जो उत्सव है ये एक सुंदर मौका है। अलग अलग सेवाएं होती है क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है, जितने बड़े पैमाने से, मतलब मेरे जितने होगा उतना ही मनाऊंगा तो वो नहीं हुआ, जानबूझ के कुछ ऐसा चीज लेना चाहिए जो नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो किसी का मदद चाहिए ही हमको, और मदद हो जाता ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा मिल जाएगा। प्रभुपाद जी भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेते थे, मैं क्या करूं, आप लोग सब करो, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये संभालो आप लोग, करना ही पड़ेगा, तो ये करना है, वो भी करना है, पंडाल होना, ये भी बनाना है, वो भी बनाना, एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा जितने बड़े पैमाने पे बनाने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा सबको सेवा मिलेगा, और जितना ज्यादा उतना उत्साह उतना रुचि बढ़ेगी भगवान के प्रति। तो इस तरह से भगवान की प्रसन्नता, भक्तों का उत्साह और रुचि बढ़ाने हेतु। और तीसरे जो है खास करके जन्माष्टमी हमारे संस्था में, वो है जो बाहर के लोग हैं, हम जनरली अभक्त कहते हैं, अभक्त नहीं, पोटेंशियली हर एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम, बस। तो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में। तो बाहर के जो ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण का तत्व नहीं मालूम, कृष्ण के बारे में नहीं मालूम, कृष्ण कौन है ये नहीं मालूम, या उनका जो विज्ञान है वो नहीं मालूम, ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका एप्रिसिएशन बढ़ता है। बोले यहां आते, बोले इतना बड़े पैमाने से ये लोग बना रहे हैं, मानना पड़ेगा यार, इनका क्या क्या भक्ति है इनका, और जिसका जिसके लिए मना रहे वो आदमी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इतना प्रेम है उनको, इतना बड़ा बड़ा पैमाने बनाते हैं, भले हमको कुछ भी नहीं मालूम पर हम देखते हैं इतना बड़ा फेस्टिवल, इतना कर रहे, क्या कर रहे, कौन है भाई, किसका जन्मदिन है आज। तो एक आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनकी एप्रिसिएशन बढ़ जाती है, और वो भक्त का जो भक्ति का जो शक्ति है उसका एक अनुभव मिलता है उनको, वाह जब आते देखते वाह कितना सुंदर, क्या अच्छा, वाह। तो उनका जो भक्ति की शक्ति है उसका अनुभव मिलता है उनको, ओ ऐसा भी हो सकता है। और भक्तों के हृदय में जो भक्ति प्रकट हो रहा है उसके प्रति उनको रुचि बढ़ जाती है, ओ ऐसा है, मैं भी आना चाहता हूं। और दो महत्वपूर्ण चीज, खास करके क्योंकि गौर पूर्णिमा में ज्यादा लोग नहीं आएंगे, जन्माष्टमी एक दिन है जहां ज्यादातर लोग आते हैं क्योंकि कृष्ण सबको मालूम है, जन्माष्टमी सबको मालूम है। दुर्भाग्यवश नेशनल हॉलिडे नहीं है, दुनिया भर चीजों के लिए हॉलिडे है, पर परम ईश्वर परम कृष्ण उनका, जिनकी कृपा से दुनिया चल रहा है, उनके जन्मदिन में छुट्टी नहीं। कैसा परिस्थिति है भारत में, क्रिसमस के लिए एक हफ्ता छुट्टी, पर जन्माष्टमी के लिए। मैं जहां रहता था बच्चे में, रामनवमी यानी नौ दिन फेस्टिवल, और नौवां दिन वो रावण को जलाते थे, बड़ा एकदम उत्सव। अष्टमी यानी आठ दिन फेस्टिवल, और अष्टमी के दिन बड़ा उत्सव, कृष्ण जन्म। दुर्भाग्यवश उस दिन भी छुट्टी नहीं, मेरा भारत महान। पर एक ही एक दिन है जो लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कम से कम आज जन्माष्टमी है। ये तो जाते वक्त कम से कम दो चीज अगर हम दे सके उनके हृदय में, तो हमारा ये फेस्टिवल यशस्वी है उनके दृष्टिकोण से। मतलब उनको देने के दृष्टिकोण से यशस्वी कब है, जाते वक्त दो चीज उनके हृदय में थोड़ा बहुत एक अनुभव होना चाहिए। एक है एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वाह चार फांगले दर्शन, क्या फार चांगले दर्शन, काय दर्शन होना है, काय फूल बंगला, विशाल प्रभु की जय। हमेशा हर एक फेस्टिवल में नया नया कैसा दिमाग चलता है लोगों का, हर एक को भगवान ने अलग अलग कला दिया है, इस बार क्या बनाएंगे, वो तो बनाया हुआ था उस बेवार से रात भर। शिवाज ठाकुर के कीर्तन एक एक साल चलता था, दिन भर रात बिना सोए। तो एक अच्छा दर्शन, एक अच्छा अनुभव, ओ अच्छा एक ड्रामा, एक अच्छा कीर्तन, एक अच्छा प्रसाद, कुछ भी एक अच्छा अनुभव, ताकि हाँ गेलो तो खाए फार चांगला है। पिछले साल गया था मैं, आज लोग आके बोलते अरे आपका वो मंदिर गया था, क्या फर्स्ट क्लास है, ऐसा नहीं वो मंदिर गया था। अरे बाप रे, अभी दूसरे बार कभी नहीं जान। बस अगर इतना वो कर सके, इतना मतलब वो नहीं कि आह आप गए थे, हाँ अरे क्या आपका मंदिर गया, क्या मन, बस इतना मतलब यू आर सक्सेसफुल। तो जब वो गेट से प्रवेश करते हैं फिर वापस गेट से बाहर जाए, तब तक एक अच्छा अनुभव, एक सकारात्मक अनुभव, पॉजिटिव, वाह क्या लोग है, क्या प्रसाद है, क्या दर्शन है, क्या मंदिर है, क्या ये है, क्या कुछ भी, क्या है, क्या है, ऐसा नहीं होना बस क्या था। तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, और दूसरा क्लियर संदेश, कुछ तो संदेश ले जाना चाहिए, कुछ नहीं तो एक हाथ में संदेश दे दो। पर कम से कम कुछ तो संदेश। अच्छा मैं एक कार्यक्रम में गया था, किसका कार्यक्रम, किसका कार्यक्रम नहीं मालूम, पर क्या था, मतलब किस लिए था प्रोग्राम, फिर माहिती नहीं मालूम, वो बल्ब देखा था, लाइट देखा था, कुछ बस ऐसा नहीं, कुछ तो एक संदेश देना चाहिए उनको। ओहो कृष्ण, कृष्ण कौन है, अच्छा अच्छा उनका जन्म ऐसा है, कृष्ण तत्व कुछ तो पता चला, ओहो मेरे को इतना तो पता चला, क्योंकि हर एक व्यक्ति शायद प्रवचन में नहीं बैठेगा, तो कुछ तो एक पुस्तक, थोड़ा प्रसाद, प्रसाद की महिमा, कृष्ण की महिमा, भक्तों की, कुछ तो साथ में कि ओहो हम शरीर नहीं आत्मा, इतना भी पता लग जाए काफी है। अगर हम इतना पता लग, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, इतना भी ज्ञान मिल जाए, 180 डिग्री पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा उनके जीवन में। कोर्स पूरा जीवन हम लोग भक्ति कर रहे हैं ये जानने के लिए, हम शरीर नहीं आत्मा है, आप बोलेंगे प्रभु जी पूरे जिंदगी भर 16 माला करके भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, उनको एक रात में कैसा होगा? कृपा मिलेगी। अगर हम लोग इच्छा करेंगे, भगवान उनको कृपा नहीं देंगे, भक्ति इच्छा करेंगे तो मध्यम अधिकारी जब इच्छा करता है ना तो कृपा मिलती है लोगों को। तो ये मौका है हमारे लिए, हमारी प्रगति करने के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये दो चीज, एक अच्छा अनुभव और कुछ संदेश हाथ में कि यस मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान है, सब कारणों के कारण है और उनकी भक्ति करना मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसके इससे मैं सुख शांति और आनंद प्राप्त करूंगा। इतना भी अगर वो समझ लें ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर वो एक भी बुरा अनुभव मिला, आपस में देखे कि भक्त लड़ रहे हैं, आपस में देखे कि यहां गंदा पड़ा हुआ है, तो फिर उत्साह नहीं मिला तो वी हैव फेल्ड। एटलीस्ट उनको जहां उनको प्रोत्साहन देने, उनको उत्साह देने इसमें हमने कुछ चूक गए। कितना सुंदर है देखिए आचार्यों का बनाया हुआ ये तरीका, हमको श्रृणवंती गायंती गृणंती अभिक्षत स्मरंती नंदन, ये सब करने के लिए भगवान भी खुश, भक्त भी खुश और दुनिया भी खुश। अगर सही तरह से इसका मतलब स्पिरिट जानना चाहिए, हरे उत्सव क्यों मनाते हैं उसको बहुत अच्छे तरह से उस समय उस दिन उस प्रवचन में महाराज जी ने हमें समझाया। तो ये एक्चुअली जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य है। और इस दिन खास करके अपने मन को पूर्ण रूप से मग्न रखना कृष्ण की, बिजी मन को, शरीर को, वाणी को पूर्ण रूप से व्यस्त रखना कृष्ण की सेवा में। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर आएगा, निश्चित रूप से उसको उतना तो उत्साह मिलेगा, उतना तो ये सबसे बड़ी प्रचार, सबसे बड़ा प्रचार है। और अंत में पीछे मुड़कर हम देखेंगे तो बोले वाह, भले थक गए, हाँ गिर गए, पर बहुत आनंद आया। पर जितना हम देंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। एक मौका भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया है, देखो लेना है लो लूटो, पर इसके लिए तुमको डालना पड़ेगा, पहले इन्वेस्ट करो फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये, क्योंकि अभी कुछ दूसरा कुछ सेवा नहीं है, है तो कोई जा सकता है, कोई दूसरा महत्वपूर्ण सेवा है तो कृपया आप जाएं, पर कोई सेवा नहीं है तो कम से कम मेरा भी कोई काम नहीं है, अभी माला भी हो गया। और एक चीज है, रोहिणी कुमार प्रभु मुझे बता रहे थे, बोले उनके यहां जब रथ यात्रा होता है तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, बोले दिन भर माला लेके घूमते मत रहना, सेवा कर रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम, बोले ये मत करना आप लोग, बोले ये फेस्टिवल के दिन अच्छे तरह से पहले अपना 16 माला करो, क्योंकि वो हमको चार्ज अप करेगा कि पूरा दिन हम लोग अच्छी तरह सेवा करें। तो नहीं तो लोगों को भी लगता है कि ओ ध्यान पूर्वक न जप करना भी एक अपराध है, जो से बोलते हैं हर रोज, पर वो भी हो रहा है। वो ऑफकोर्स सेवा बड़ा महत्वपूर्ण है, पर उन्हें एक रूल बना दिया, मेरे को अच्छा लगा। कितना तर प्रैक्टिकल है आप देखिए, 16 माला के बाद आप 24 घंटा करते रहिए वो चलेगा, पर अपना जो 16 माला है वो दिन भर के लिए मत रखिए, एटलीस्ट आज के दिन एक जगह बैठकर, भले आपको सेवा है तो बोल दीजिए ये सेवा से ये सेवा करूंगा, उसके बाद एक जगह बैठकर खास आज के दिन, भगवान का जन्मदिन है, कृष्ण जन्म हमारे हृदय में होना चाहिए, तो हमारा ये जो माला है हो सके तो प्रवचन के बाद यहीं बैठो, आपका नहीं हुआ है ना दूसरा सेवा, सर्वधर्मान परित्यज्य ऑफकोर्स प्रसाद का सेवा है जाके बनाइए, क्योंकि दूसरे लोग सर्वधर्मान परित्यज्य आपके ऊपर आ जाएंगे, नहीं तो महत्वपूर्ण सेवा है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो करते घूमते फिरते मत कीजिए, एटलीस्ट आज के दिन आपका गिफ्ट, आपका जो चेतना है वो दीजिए कृष्ण को। तो मेरा कुछ काम नहीं है, ऑलमोस्ट 16 तक हो गया है, और जिसका कुछ भी सेवा नहीं यहां बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरे लोग जा सकते हैं। तो पिछले बार हमने चर्चा किया था कि किस तरह से हाँ भगवान श्री कृष्ण देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के बाद कंस और वसुदेव, सुर और असुर, इन दोनों के जो भेद हैं, अंतर तुरंत नजर आ गया। कभी कभी हमको लगता है ये जब कहानी बड़े बड़े पुराने पुराण के कहानी पढ़ते हैं, असुर था, हिरण्यकशिपु, रावण, तो हमको लगता है कि ये लोग तो विशाल काय वाले, आदमियों को खा जाने वाले, दो सिंह वाले, दांत बड़े बड़े वाले, ऐसे ही असुर लोग हैं। नहीं, द्वौभूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव असुरेव च। भगवान 16वें अध्याय में बहुत सुंदर से समझाते हैं कि दैव और असुर योनि क्या है। सुर योनि में पैदा हो के असुरिक स्वभाव हो सकता है, नलकुवर और मणिग्रीव जैसे, और असुर योनि में पैदा होके देवताओं के भी पूजनीय लक्षण हो सकते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे। तो जन्म से ये चीजों से संबंध नहीं है। भक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और भक्त में और अभक्त में अंतर क्या है, यहां नजर आता है कि एक अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, धर्म को अपना सकता है, धर्म को त्याग सकता है, अधर्म को अपना सकता है, अनुकूल है, मतलब मेरा स्वार्थ, स्वार्थ को जीवन का उद्देश्य है स्वार्थ, मेरे स्वार्थ यानी नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु भगवान। अरे स्वार्थी बनो, प्रहलाद महाराज कहते स्वार्थी बनो बाबा, पर स्वार्थ जानो, स्व स्व अर्थ, हमारे लिए मूल्यवान चीज क्या है। स्व यानी अगर शरीर समझ लोगे आप तो स्वार्थ मतलब है इंद्र तृप्ति, विषय भोग, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे मन को, मेरे अहंकार को जो अच्छा लगता है उसको केंद्र में रखते हुए उसके लिए अगर भक्ति करना अनुकूल है तो भक्ति करूंगा, और कल भक्ति प्रतिकूल है तो भक्ति को त्याग दूंगा, धर्म अनुकूल है तो स्वीकार करूंगा, प्रतिकूल है तो त्याग दूंगा। तो कृष्ण केंद्र नहीं है, भक्ति केंद्र नहीं है, स्वार्थ केंद्र है। तो कंस प्रदर्शन कर रहा है कितना प्रेम करता हूं, क्यों, क्योंकि सामाजिक समाज में लोग कहेंगे क्या प्रेम है देखो बहन के प्रति, हाथों से प्रेम से कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अहंकार को अच्छा लग रहा है। पर वही जब पता चला मेरा स्वार्थ के ऊपर ये बाधा है, तुरंत उसका मूल स्वरूप प्रकट हो गया। और वसुदेव को देखिए, वसुदेव अभी शादी हुई है, अभी विवाह हुआ और निकल रहे हैं, एकाएक आकाशवाणी हुई, होते ही जैसा मैंने पिछले बार चर्चा किया, महाभाग, वसुदेव को महाभाग बताया गया है और भौतिक कंस को कुलपामसनः, कुलपामसनः मतलब क्या, कुल का सबसे अधम व्यक्ति, कुल का कलंक को करने वाला कुलपामसनः। तो पूरे भोज वंश में उससे नीच व्यक्ति कोई नहीं हुआ था। कोई भी कहता है भोज वंश वही वाला जहां कंस पैदा हुआ था, जैसे बोलते हैं ना यदु वंश, भोज वंश, तो भोज वंश में कुलपामसनः, क्यों, क्योंकि दो, खलह पापह, दो चीज उपयोग किया गया है सुखदेव गोस्वामी, एक तो खल, खल यानी बड़ी ईर्ष्यालु, और दूसरा पापी, वो ईर्ष्या के कारण पाप क्रिया में करने वाला। तो हमारे हृदय में ईर्ष्या या पाप है कैसे मालूम, क्योंकि हम लोगों ने तो तिलक कंठीमाला पहन के रखा है, बहुत सरल सी बात है। ऑफकोर्स कंस जैसा हम लोग बाहर से प्रकट नहीं करेंगे शायद, पर कम मात्रा में भी दिख जाए तो समझ लेना कुछ तो है वो, के उनका जो प्रेम है वो चंचल है, वो प्रेम इसके प्रति भी नहीं, उसके प्रति भी नहीं, उसके प्रति भी नहीं, कभी इसको प्रेम दिखाता है, कभी उसको प्रेम दिखाता है, कभी इसको प्रेम दिखाता है, नहीं, प्रेम ना उससे है ना उससे है ना उससे, प्रेम मुझसे है, तू मेरा अगर पीठ खुजलाएगा तो मेरा दोस्त, तू मुझे तकलीफ दिया तो तू मेरा शत्रु, तो मेरे को इससे लेना नहीं, वो व्यक्ति से लेना नहीं, परिस्थिति से लेना देना नहीं, मेरे स्वार्थ से लेना देना। तो उनका प्रेम जो है चंचल है, और एक क्षण के अंदर वो स्वार्थ निकल गया तो वो द्वेष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, धर्म के ऊपर कोई मतलब रिगार्ड, कोई मतलब सम्मान नहीं है। अरे धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, अगर स्वार्थ मिल रहा है तो करो, और नहीं स्वीकार, धर्म अगर अनुकूल है तो स्वीकार करो, स्वार्थ के लिए प्रतिकूल है तो धर्म को भी त्याग दो। पर हम देखेंगे प्रभु रामचंद्र की लीला में या कृष्ण लीला में भी, पांडवों की देखिए, धर्म के विरुद्ध भले उत्तेजित हुआ, भीम के सामने द्रौपदी का निर्वस्त्र किया जा रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, भीम जैसे व्यक्ति को कितना क्रोध आ सकता है, पर फिर भी उन्होंने सहन किया। द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। बड़ा उत्तेजित स्थिति है, सहन किया, नहीं ये विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। और तीसरा, समाज के दृष्टि में भी निर्लज्ज व्यवहार, कहां देखिए पूरी दुनिया देख रही है, पूरा राज्य देख रहा है, द्रौपदी देवकी का विवाह और महाराज देवक सब सब पूरी दुनिया देख रही है, और तुरंत स्वार्थ उसको थोड़ा असर पड़ गया, तुरंत उसने तलवार निकाल के मार दे जा रहा है, अभी अभी प्रेम दिखा रहा था और अभी भी सबके सामने, कम से कम सोचो सबके सामने तो ऐसा व्यवहार मत करो, समाज के दृष्टिकोण में तो कम से कम ऐसा व्यवहार मत करो, नहीं समाजवाद कुछ नहीं, मेरा स्वार्थ है तो कुछ भी मैं करूंगा। तो और उसके विरुद्ध में जब वसुदेव का गुणगान करते तो कहा महाभाग, महाभाग क्यों, महाभाग मतलब बड़े सौभाग्यशाली, एक गंभीर और विचलित नहीं हुए, अविचलित, बड़े से बड़े उत्तेजक परिस्थिति में भी गंभीर और अविचलित, और एक क्रूर व्यक्ति को भी कैसे सांत्वना देना है ये उन्हें मालूम था, क्योंकि वो राजनीति मतलब राजनीति में थे, वो क्षत्रिय थे, वो तो उन्हें वो कला मालूम थी और उसका उन्होंने पूरा उपयोग किया, एक क्रूर व्यक्ति को भी कैसा सांत्वना देना है, और तीसरा क्रूर से क्रूर शत्रु को भी कैसे माफ करना है, सबसे क्रूर शत्रु उसको भी कैसे माफ करना, वैष्णव में हम देखते हैं ये बार 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 बार, हम देखते हैं रामानुजाचार्य के जीवन में देखते हैं कैसे कैसे लोग उनको मारने को आए उनको भी उन्होंने क्षमा कर दी, द्रौपदी के जीवन में हम देखते हैं उनके पांच बच्चों को बुरी तरह से मारने वाले उसको भी जब बांध के पशु जैसे ला के अर्जुन ने डाला कि तीन ने छोड़ दो इसको बेचारे को, क्रोध है पर जो कृपा या करुणा है या कंपैशन है दया है उसकी शक्ति जो है वो क्रोध को भी ठंडा कर देती, ठीक है पर जाने दो। महाभाग, अब वसुदेव कंस को सांत्वना देने जा रहे हैं, तो हाँ तो यहां बहुत सुंदर से वर्णन है, मैं बहुत ही लंबे इसमें मैं नहीं जाऊंगा, अट्ली संक्षिप्त रूप में जो मुख्य पॉइंट है मैं वो कहना चाहूंगा वो है कि हाँ सबसे पहला श्लोक, अभी देखिए पत्नी को वध करने जा रहा है वो, अभी अभी नवविवाहित पत्नी को वध करने जा रहा है, और उस कंस को भी ये शब्द कहना, श्लाघनीय गुणः शूरैर भवान भोज यशस्करः सकथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियं उद्वाह पर्वणि। वसुदेव ने कहा हे साले, साले मतलब गालदी से नहीं, पत्नी का बहन साला, सॉरी पत्नी का भाई, हे साले तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है, भोज यशस करा। वाह, हे भोज वंश के शिरोमणि, चमकने वाले एकदम, भोज यशस करा। बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, श्लाघनीय गुण, तुम्हारे अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। क्या गुण हैं? केवल वसुदेव को दिख रहे होंगे। बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसकी बहन है, विशेषतः उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। और बाद में बहुत सारे श्लोकों में, एटलीस्ट कुछ तीन चार और श्लोकों में वसुदेव जी कुछ श्लोक कहते हैं जिसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर से समझाते हैं कि वसुदेव इज यूजिंग डिप्लोमेसी। जैसे मैंने कहा कि ना दाम्भिकता, तो क्या ये दाम्भिकता है? हृदय में कुछ और है वसुदेव का, पर बाहर कुछ और दिखा रहा है वो। पर एक भक्त को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरलता, भक्त का लक्षण है सरलता। सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, नॉट डुप्लिसिटी। जितने हमारे अंदर वो दाम्भिकता है उतना हम कृष्ण से दूर चले जाएंगे, जितने हमारे हृदय में सरलता है उतना हम भगवान के पास आएंगे, उतना भक्तों की कृपा मिलेगी, भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा। पर यहां हम देख रहे हैं कृष्ण के पिता, महान भक्त, शुद्ध भक्त, जिनके द्वारा भगवान ने निश्चय किया कि मैं इस संसार में अवतरित होऊंगा, ऐसे व्यक्ति दाम्भिकता प्रकट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी। हृदय में कुछ और है पर जीवा पे कुछ और है। साम, दान, दंड और भेद, जो असुरों का चार पुरुषार्थ है, जिसको शंडा और अमर का प्रहलाद महाराज के दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहे थे कि बेटा तेरे पिता जैसे महान साम्राज्य को वंश बनाए रखना है। फोर सीक्रेट फॉर सक्सेस, साम, दान, दंड, भेद। साम मतलब क्या? तू महान है, तू बहुत ग्रेट, तू भी ग्रेट, मैं भी ग्रेट, तू भी ग्रेट ना। उस व्यक्ति को सांत्वना देना गुणगान करके, उसको गुणगान करके, आह आप कितने महान, आपने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, आह सचमुच में उसको लगता है हाँ मुझे याद ही नहीं था, याद दिला रहा मेरे को इतना महान हूं। तो पेसिफाई मतलब साम। दूसरा दान। पॉलिटिक्स में कैसा होता है, उसको एक पदवी दे दो खुश हो जाएगा, चिल्ला रहा ए ले पदवी ले, खुश, तेरे को वही चाहिए था ना। भूखा कैसे चिल्लाता है, भूखा, एक भूखा आदमी चिल्लाता था, बच्चा रोता रहता है, ए ले खुश, एक केक दे दिया, मुंह में घुसा दिया, मुंह बंद और हाथ हिला रहा, हाथ में दो दो केक, बस हो गया तीन केक। तो दान, उसको एक पदवी दे दो, कुछ एक देना, उससे तो संतुष्ट करना उस व्यक्ति को, जो असंतुष्ट को संतुष्ट करने का एक तरीका है। अगर बहुत तहलका मचा रहा है पूरे राज्य में, एक विरोधा पार्टी पॉलिटिशियंस, उनका होता है ना, देख अगर तुम लोग दोनों का संगठन करके जाएंगे ना, सीट मिलने के बाद तू उप प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, अगर बहुत शक्तिशाली हो तो तू प्रधानमंत्री, मैं उप प्रधानमंत्री। तो दान, एक कुछ चीज जो देना, देकर उसको सांत्वना करना, सांत्वना देना, ताकि वो राज्य ठीक ठाक से चले और वो शत्रु इस तरह से ना हो। और साम, दान, भेद। भेद यानी धमकी देके उसको डराना, देख ऐसा ऐसा हुआ ना तो ऐसा ऐसा हो सकता है, सोच ले तेरा नाम बर्बाद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तू, तो फिर बाद में वोटिंग के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। तू अगर उसका मर्डर कर दिया तो फिर बाद में तकलीफ हो जाएगा, ये हो गया, हो गया भेद, उसके हृदय में भय पैदा करना। और दूसरा है, ये सबसे भी सुधरे नहीं, सीधा तलवार लेके खत्म, दंड, अलग अलग तरीके से दंड। तो ये जो है ये वैदिक संस्कृति के अनुसार है। ये एक पॉलिटिशियन, एक राजा को इसमें निपुण होना चाहिए, राज्य करना है तो ये निपुण होना ही चाहिए इस चीजों में, इसके बिना वो चला नहीं सकता राज्य को। पर प्रहलाद महाराज ने इसको नकार दिया, 100% उन्होंने नकार दिया। क्यों? बोले ये भेदभाव लाने वाला चीज गलत है। भक्त जो है ही सीज द यूनिटी अमंगस्ट ऑल द डिफरेंसेस, भेद भेद में भी समानता देखता है। और एक असुर जो है समान चीजों में भी भेद निकाल के अलग अलग बनाना चाहता है, दो करना। दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब जहां एकत्र है वहां दो करना, क्योंकि दो नहीं होगा तो, दो पार्टी नहीं होगा तो लड़ेगा किसे? उनका खाना पीना चलता लड़ाई में। दो पार्टी होगा, ऑपोजिशन पार्टी के बिना फिर मजा क्या है फिर पार्लियामेंट में? तो एक लाने का, एकत्र करना एक भक्त का लक्षण है। ओ अमेरिकन है, गोरे ये लोग, ये लोग काले हैं, ये लोग गरीब हैं, ये लोग अमीर हैं। प्रभुपाद जी हम देखेंगे उन्होंने भेदभाव नहीं किया। अमेरिकन हो चलेगा, यूरोपियन हो चलेगा, अफ्रीकन हो चलेगा, हर एक के अंदर कॉमन यूनिटी क्या है, समानता क्या है? हर एक भगवान का अंश है। ममहि वांशो जीवलोके जीवभूतो सनातन। समानता को सिर्फ दृष्टिकोण रखकर उस समानता को प्रामुख्यता देकर साथ में लाना, साथ में लाना, साथ में। एक कॉमन चीज क्या है देखो भाई, और साथ में आ जाओ। और डिप्लोमेसी का मतलब है कि सब समान है, उसमें भी थोड़ा देखा, गोरे ये लोग सब काले, ये लोग गोरे, दो पार्टी, ये अमीर ये गरीब, ये महाराष्ट्रियन ये नॉन महाराष्ट्रियन, ये कोल्हापुरी वो और कोई पुरी। तो मतलब समान में भी कुछ देखना, कुछ तो अलग देखना, दो करना। तो ये टोटली विरुद्ध है, भक्तों के लिए विरुद्ध है। कृष्ण माने कृष्ण को केंद्र रखकर सबको एक साथ लाना, इंटरनेशनल सोसाइटी। रूपा ने किया, महाप्रभु ने यही किया। महाप्रभु रूपा ने कहा दिस इज द रियल यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। झंडा बढ़ रहा है ऐसा नहीं, एक ही झंडा, सर्वम शास्त्रम देवकी पुत्र, एको देवो देवकी पुत्र, एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, एक। तो एकत्व दिखाना ये महात्मा का लक्षण है, और दो दो करना जो है ये कोर्थ पुत्रेण जाते न यो नहीं, एक श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजह परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजह, ये मेरा, पर ये तेरा, गणना लघु चेतसाम, जिसकी बुद्धि बहुत नैरो मतलब बहुत ही कम है, संकुचित है, वो भेदभाव में ज्यादा देखता है। भगवत गीता में और भागवतम में भी वर्णन आया है बुद्धि, सत्वगुणी बुद्धि क्या है, भेदों में भी एकता देखना, ये सत्वगुणी बुद्धि है। रजोगुणी बुद्धि एकता में भेद देखना, ये कुत्ते हैं, ये बिल्ली है, ये कॉकरोच है, ये मनुष्य है, और मनुष्य में भी ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये लाल है, ये पीले हैं, उसमें भी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। और तमोगुणी बुद्धि मतलब अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म समझना, कुछ फर्क ही नहीं उनको। तो सात्विक बुद्धि जो है एकता देखना, अनेकता में भी एकता देखना, ये सात्विक बुद्धि है। पर यहां हम देखते हैं ये भेद क्यों उपयोग कर रहे हैं। एक मतलब कृष्ण भावना में यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब क्या? उपयुक्तता ही तत्व, हमारा तत्व यही है उपयोग। अगर किसी चीज को कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, अगर लोगों को साथ लाने में, लोगों को आगे प्रगति करने में कुछ चीज मदद कर सकता है, अनुकूल जैसे संकल्पो, अनुकूल है तो उसको स्वीकार करेंगे हम लोग, केवल उस समय तक, केवल उस समय तक, और वो भी शास्त्र के आधार पर और शत प्रतिशत शुद्ध हृदय के साथ कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ग्रेट मैन चीट फॉर ए ग्रेट कॉज। महात्मा विदुर झूठ बोले, धृतराष्ट्र और गांधारी को बचाने के लिए, धृतराष्ट्र को बचाने के लिए, संजय को बिना बोले, युधिष्ठिर महाराज को बोले बिना रात ही रात उनको ले गए। संजय बोला मेरे प्रति बहुत बड़ा इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, बिना बोले चले गए। कैसे चले गए? उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, ग्रेट मैन चीट फॉर ए ग्रेट कॉज। महान आत्मा अगर धोखा भी देते हैं एक महान उद्देश्य के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स उपयोग किया घर से बाहर निकलकर चैतन्य महाप्रभु की शरण जाने में। सनातन गोस्वामी ने इस डिप्लोमेसी का उपयोग किया उन लेच्छों के साथ, जेल कीपर के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण जाकर इस कृष्ण सत्तत्व को पूरे विश्व भर में प्रचार करने हेतु, जिसके द्वारा उनको भी लाभ मिला। पर अगर केवल कौन उपयोग कर सकता है और कब, ऐसा नहीं कि परमानेंटली हमेशा जीवन भर उन्होंने ऐसा उपयोग किया, किन के प्रति उपयोग किया? कंस के प्रति ऐसा उपयोग करना है जो वैसे भी नालायक है। थोड़े दिन पहले गोविंद प्रभु एक क्लास दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया भगवान ने क्यों युधिष्ठिर को झूठ बोलने को बोला, भगवान ने क्यों अर्जुन को, कर्ण को ऐसे परिस्थिति में मारने बोला जहां वो गलत थी। तो तीन चीज उन्होंने अच्छी तरह से बताया। बोले एक, तीन प्रकार की नीति है। नीति जो है धर्म, धर्म के मोरालिटी, मोरालिटी इज सबऑर्डिनेट टू स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता से नैतिकता जो है आध्यात्मिकता से नीचे स्तर का चीज है। और तीन प्रकार की नीति बताई गई है, एक कणिक नीति, दूसरा बृहस्पति नीति और तीसरा शुक्र नीति। कणिक नीति क्या है? तुझे जो चाहिए वो प्राप्त करना है और वो प्राप्त करने के लिए कोई भी मर जाने दो, कोई भी नष्ट होने दो, कुछ भी हो, तुझे जो चाहिए उसे प्राप्त करना है बस, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरी अधोगति भी होगी चला पर चलेगा, पर मैं करने के लिए, दूसरों की अधोगति होने दो चलेगा, पर मैं करने के लिए तैयार हूं। यह कणिक नीति है। दुर्योधन तुझे राज्य चाहिए ना, पास मैं जैसे बताऊंगा करते जा तू। कणिक वही था जिसने वो लक्ष्य ग्रह बनाया, वो बताता है, वो नीति क्लियरली बताता है, कोई भी हो सामने में कुछ भी हो चलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, हजारों लोगों पर क्या परिणाम होगा वो मुझे नहीं मालूम, मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करके ही रहूंगा। ये कणिक नीति है। दूसरा बृहस्पति नीति। बृहस्पति नीति मतलब युधिष्ठिर महाराज जैसे, ना सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा, मर जाने दो कुछ भी हो, सब लोग मर जाने दो, सत्य ही बोलते रहूंगा। अरे 64 करोड़ लोग मारे जाएंगे, पूरा विश्व का साम्राज्य नहीं, मैंने वचन लिया है। जब पहला बार ये जो क्या बोलते हैं द्यूत क्रीड़ा होती है, नहीं, राजसूय यज्ञ के पास, हाँ राजसूय यज्ञ के बाद जब शिशुपाल का वध हो जाता है तब व्यासदेव वहां आते हैं और व्यासदेव आके कहते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि तुझे एक साधन बनाकर बहुत बड़ा नर संहार होने वाला है युधिष्ठिर, और इसके बाद भगवान तुझे राज्य देंगे। क्लियरली बता देते हैं व्यासदेव। तो युधिष्ठिर कहता है क्या मेरे कारण नर संहार, पूरे विश्व में नर संहार होगा? तो उसी समय आग लगाकर उसने वो वचन लेता है कि आज मैं वचन लेता हूं मेरे से बड़े जो अधिक क्या बोलते हैं सीनियर, मेरे वरिष्ठ जो भी हैं उनके वचन के विरुद्ध कभी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, वरिष्ठ का सुनना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि उसके विरुद्ध जाऊंगा तो ये सब नर संहार का कारण हो जाएगा। दुर्योधन सुनता रहता है, शकुनि भी सुनता रहता, बोले वाह वेरी गुड वेरी गुड। दुर्योधन अब धृतराष्ट्र को बोल उनको आमंत्रण देने के लिए जुआ खेलने के लिए। ना नहीं बोल सकता, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं वरिष्ठ, ना नहीं बोल सकता वो। कई लोग कहते हैं मालूम है, ऑफ कोर्स व्यासदेव ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यमराज है वो, कोई भी संहार करना है तो यम के द्वारा ही होना है और युधिष्ठिर महाराज यमराज के ही विस्तृत रूप है, तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा था। तो इस तरह से वो भी एक कारण था, पर इन्होंने वचन ले लिया। दिस इटसेल्फ इज ए गैम्बल, ऐसे उल्टे सीधे व्रत लेना यही सबसे बड़ा गैम्बलिंग है। तो यहीं से गैम्बलिंग शुरू हुआ, वो द्यूत क्रीड़ा वहां नहीं शुरू हुआ जब शकुनी के साथ बैठे, यहां से शुरू हुआ। आप बोलेंगे प्रभु जी वो तो महाजनों में से एक है, बोले हाँ पर महाभारत जो है उसमें से सीखने चीजें हैं, कुछ सिखाने चीज भी हैं, निष्कर्ष वही है, शुद्ध भक्त हैं वो लोग, पर वो अपने व्यवहार से वो दिखा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना कैसे नहीं करना। तो ये बृहस्पति नीति है। अरे जिसने शुक्र नीति अपनाया है पूरा संहार करने के लिए अपना स्वार्थ के लिए, उसके सामने बृहस्पति नीति कब तक चलेगी? कह नहीं 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 तू मार भी दे सर झुका के खड़े रहूंगा। कृष्ण बोले ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और इस समय शुक्र नीति, सॉरी बृहस्पति नीति, इस समय शुक्र नीति। और शुक्र नीति क्या है? एक ऊंचे तत्व के प्राप्त करने के लिए एक नीचे तत्व को त्यागा जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। उसे आसक्त नहीं, उसे द्वेष नहीं, वो एक साधन है हमारे उच्च तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो साम दान दंड भेद ऐसा है। हालांकि शुक्राचार्य ने उसका गलत उपयोग किया, शुक्र नीति कहते हैं उसको, पर शुक्राचार्य ने गलत उपयोग किया। जब महाराज बलि वचन दिए इसको वामन देव को कि मैं कुछ भी दान देने के लिए तैयार हूं, तीन पग जमीन देने के लिए तैयार हूं, तो जो भी मांगिए देने के लिए, तुरंत शुक्राचार्य ने कहा नहीं, अपने प्राण बचाने के लिए ये स्थिति में झूठ बोला जा सकता है एक ऊंचे चीज के लिए। पर इधर दुर्भाग्यवश शुक्राचार्य अपनी ही नीति को गलत उपयोग किए। एक उच्च कोटि यानी भगवान को शरण जाना, सर्वश्रेष्ठ है वो, उसके लिए उन्होंने उसको त्याग कर एक अपना स्वार्थ के लिए उन्होंने उपयोग किया। पर ये नीति गलत नहीं है। शुक्र नीति कहती है कि एक उच्च कोटि के प्राप्त करने के लिए, और यह भी क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ, कौन से साथ, क्या उन क्या उसको समझाए, धर्म क्या बताए, ये धर्म कुछ नहीं मालूम इसको, नहीं सुनने वाला है। देखेंगे हम जैसे जैसे बाहर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग उसे बताते हैं। कंस वैस तू मृत्यु से क्यों डरता है? अब नहीं तो 100 साल के बाद, पर आत्मा के हित के हेतु अपने शरीर के हित को प्रामुख्यता मत दे, सॉरी शरीर के सुख के हेतु आत्मा का जो हित है उसको त्याग मत। आत्मा के हित के लिए शरीर के हित को त्याग देना या कॉम्प्रोमाइज करना ये अच्छी बात है, जैसे फास्टिंग है, फास्टिंग शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अभी ऑफकोर्स अच्छा है थोड़ा बहुत, जरूरत से ज्यादा पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी जरूरत से ज्यादा लोगों ने उपयोग किया इसका, तो प्रभुपाद बोलते हैं इसमें नहीं, दिस इज रॉन्ग यूसेज। ईशोपनिषद में कहा गया है जिजी विषय सतम समाहा, 100 साल जीना हमको, जितना वसुदेव भी कहते हैं पूरा बुद्धि पूरी शक्ति लगाकर हमको जितना हो सके उतना साल जीना चाहिए, पर कैसे जीना वो भी जब जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब छाप दे रहे हैं जल्दी मर जा और ये हम जीना चाहते हैं, लोग सोचना चाहिए कि बहुत साल जिए ताकि हमको इससे कितना लाभ मिल रहा है, ऐसा भावना रख के अगर मर भी गया तो अच्छा है। तो जिजी विशेष शतम समाह, 100 साल जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना जीवन भी सफल हो और 1000 लोगों का जीवन सफल हो, और उसके हेतु शरीर के जो जरूरतें हैं हित है उसको अगर थोड़े समय के लिए त्याग भी दिया जाए तो चलेगा एक आत्मा के हित के लिए, पर शरीर के हित के लिए आत्मा के हित को त्याग देना मूर्खता है। तो इस तरह से यहां साम दान दंड भेद जो है एक बहुत शक्तिशाली एक टेक्निक क्या बोलते हैं कला है तरीका है, और किसके लिए उपयोग किया, किसके विरुद्ध, कंस कंस जैसे असुरों के विरुद्ध, और किस लिए, अपने लिए नहीं, कृष्ण आने वाले हैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में। आज देवकी अगर मर गई, आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी भगवान ने बोल दिया तो होगा ही ना, मारने मारने दो, नहीं हमारा प्रयास भी होना चाहिए, भगवान ने बोल दिया है ना पृथ्वी त्याचे जाता नगर आदि राम सरोवर प्रभु जी होने वाला है, हमको क्यों इतना तकलीफ लेने का, आराम से बैठ के हरे कृष्णा करते रहेंगे। प्रभुपाद जी कह सकते थे ऐसा, पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम, अर्जुन कह सकता था ऐसा, प्रभु आपने विराट स्वरूप में तो पूरा दिखा दिया, द्रोणमच भीष्मच जयद्रथम सब घुस रहे थे आपके मुंह में, घुसने दो मैं यहां गांजा पीते बैठे रहूंगा हरे राम हरे कृष्णा बोल के, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा। अर्जुना डिंट से कृष्णा यू फाइट द बैटल एंड आई विल स्मोक गांजा, मैं आराम से बैठे रहूंगा तुम लड़ो, नहीं आपने बता दिया क्या है, पर निमित्त मात्र भव, प्रभुपाद जी कह सकते थे महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी त्याचे, तो नहीं अपना प्रयास क्या है, हां 8वां पुत्र मारेगा पर मेरा मेरे मेरे संरक्षण में अभी देवकी है, और मैं पति हूं, पत्नी के प्रति मेरा कर्तव्य है, कृष्ण के संबंध में मेरे इंद्र भोग की वस्तु को संरक्षित रखने के लिए नहीं, वो मैं त्याग सकता हूं, पर कृष्ण के द्वारा यदु ने भी, महाराज यदु ने अपना शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य ने अपने पिता पुरुरो ने ययाति ययाति ने अपने तीनों पुत्रों से, कई पुत्र थे, बोला मेरे इंद्र तृप्ति के लिए मेरे को नौजवानी चाहिए, कितना निर्लज्ज है देखिए, बाप आके बेटे के कह रहा है मैं भोग करना चाहता हूं, लेना चाहता है क्या मेरा ट्रांसफर करके, आदमी अपने इंद्र तृप्ति के लिए कितना स्वार्थ के लिए कितना निर्लज्ज हो सकता है, अपने पुत्रों से मांग रहा है कि तुम्हारी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। तो एक व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया, पुरु ठीक है मैं सहन करूंगा, पर पिता आपकी आज्ञा है मैं पालन, भीष्म जैसा किया, भीष्म ने भी यही किया, अपने शांतनु महाराज के सत्यवती के प्रेम के कारण अगर भीष्म पितामह अगर राजा होते, भीष्म जैसा व्यक्ति धर्म को जानने वाला अगर वो देश का राजा होता तो क्या कुछ नहीं हुआ होता, कुरुक्षेत्र हुआ नहीं होता, नरसंहार नहीं हुआ होता, पर अपने पिता के स्वार्थ के हेतु सत्यवती के साथ भोग करने के लिए अपना राज्य भी गंवा दिया, यह मूर्खता है। मतलब आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे महाजन है, वो महाजन है पर यह निर्णय हमको मतलब धर्म के मतलब शास्त्र को उसमें वहीं से उतने तक लेना चाहिए, वो गलती की उन्होंने, वो गलती की के अपने इसके लिए अपने पिता के स्वार्थ के लिए उन्होंने एक योग्य राजा शक्तिशाली भीष्म है तो 100 99% विश्वास था दुर्योधन को, क्योंकि भीष्म पितामह है। अगर भीष्म पितामह वो पांडवों कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाते तो 99% लोग इधर आ गए होते। ये भीष्म पितामह होने के कारण लोग थे, भीष्म वहां है। तो इस तरह से ये थोड़ा ये साइड ट्रैक हो रहा है, पर विषय ऐसा है कि एक उच्च कोटि के लिए, कहां था मैं, कहां से शुरू किया ये? हाँ, शुक्राचार्य से, वसुदेव, या वसुदेव देवकी के संरक्षण के लिए, ताकि मेरा भोग हो, मेरी पत्नी जीवित रहे, इसलिए नहीं बोले। वो भी उनका कर्तव्य था। पुरु ने, हाँ पुरु ने अपने पिता को देने के लिए अपना दे दो, इसकी महानता है, पुरु की महानता है वो। दूसरे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने नहीं दिया, बोला वाह आप मौज करना चाहते हो और हम बूढ़े हो जाएंगे तो काम वासना अंदर है, नौजवान जैसे शरीर बूढ़ा हो गया तो फिर भोग नहीं करेंगे तो फिर मर जाएंगे तो हालत हो जाएगा हमारा, अगले जन्म में उसको पूर्ण करना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते। वो भी सही है एक सगह से, पुरु भी सही है। पर यदु के पास जब आए, बोले यदु कहे मैं दे सकता हूं चाहे तो, पर मैं नहीं दू, मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने वाले, केवल उसके लिए, ऐसा लगे बड़ा स्वार्थ है ये, पर मैं इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, एक उच्च स्थिति के लिए मैंने इस चीज को तक नकारा है। तो यहां हम देखते हैं वसुदेव जी साम दान, साम कैसे उपयोग किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक गुणगान करना। कैसे एक व्यक्ति को शांत कैसा किया जा सकता है जो तहलका मचा रहा है, धरना कर रहा है, एक उस व्यक्ति का गुणगान करना, अरे तू तो महान है यार, श्लाघनीय गुण, तेरे अंदर कितने तेरे को अच्छे गुण है, श्लाघनीय गुण। दूसरा है संबंध दिखाना, अरे तू किसके साथ संबंध है, जो ना भोज यशस कर, इतना महान वंश के साथ तेरा है, ऐसा व्यवहार मत कर। तो भो रिले संबंध के द्वारा, अरे किस वंश से तू आ रहा है, एक तेरा तेरा खुद का गुण इतना है, तू किस वंश से आ रहा है। तीसरा व्यक्तित्व के द्वारा, अरे तेरी बहन मेरा भारत महान, क्यों, क्योंकि मैं पैदा हुआ, भारत महान नहीं है, मैं पैदा हूं इसलिए भारत महान। तेरी बहन, कंस की बहन, उसका हालत ऐसा होगा तेरी बहन होते हुए, और तुझे क्या फायदा होगा, हन्या स्त्रियम, तेरे यश के बारे में सोचना, कितना तू इतना यशस्वी आदमी है, उस पर अगर कलंक लग जाएगा तो अच्छा नहीं है ना। एक सुंदर स्त्री है, उसको अगर सफेद वाला दाग आ जाए, क्या बोलते वो, हाँ कोड आ जाए, अच्छा नहीं लगेगा, और खास करके वो अगर मिस यूनिवर्स हो। इस तरह से तू इतना महान है, मिस्टर यूनिवर्स है तू, और तेरे में एक कलंक लग जाएगा, अरे 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 बहन को मारा इसने, ये बहन को मारा, तो तू इतना, तेरी बहन है, तेरा फायदा है इसमें, तेरे यश का सोच। और दूसरा भेद, भय कैसा पैदा किया, भगिनी बहन को मार रहा है, अरे बहन को तो राखी बांधना है, उसको उसे राखी बांधना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, तू मार रहा है, गले से गला काट रहा है। और न केवल तेरा इस जन्म में अपयश होगा, तेरा यश के बारे में सोचना, पूरे समाज में तेरा अपयश हो जाएगा। और तीसरा अगले जन्म में तू नरक में जाएगा, अभी तो तुझे फायदा हो जाएगा पर नरक में जाएगा तू। तो इस तरह से भेद उत्पन्न करना। फिर दान, दान क्या, तेरे शत्रु के गर्भ में, तेरी बहन के गर्भ में तेरा शत्रु आने वाला है, तो उसे अगर तू नहीं मारेगा तो तुझे, तू न केवल मतलब तू दानी बनेगा, जीवन दान, जिसको आराम से वो मार सकता था उसको उसने जीवन दान दिया, तेरा कितना यश मिलेगा। तो इस तरह से दान, दंड का उपयोग क्यों नहीं किया, वसुदेव कंस को दंड दे, कंस इतना शक्तिशाली था, वसुदेव क्या करता, तो दंड देने का सवाल ही नहीं उठता इधर। तो साम दान और भेद के द्वारा वसुदेव ने कृष्ण की हित के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, रूप गोस्वामी कहते हैं जो भी हमारी प्रयत्न होनी चाहिए कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण के हेतु, कृष्णार्थे, स्वार्थे नहीं, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, इस तरह से। पर देखे कि कंस के हृदय में क्यों, क्योंकि कंस ऐसा व्यक्ति ऐसा है कि उसको अगर प्रतिकूल है उसके विषय स्वार्थ के लिए तो वो सुनने वाला नहीं है, तब दूसरा आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट गुणगान किए पर देखा कि ये तो बहुत मोटे चमड़ी वाला है, इसको घुस ही नहीं रहा अंदर, तो बोले इसको कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। कभी कभी इंजेक्शन देते हैं ना, कभी देखते हैं कि भैंस जैसा आदमी घुसता ही नहीं छोटा, तो बड़ा वाला इंजेक्शन लाना पड़ता है, घुसाना पड़ता है उसको। तो बोले ये तो मोटा चमड़ी वाला है, तो चलो इसको दूसरा सुनाएंगे। तो दूसरा क्या है, ठीक है तू, तुझे मृत्यु का भय है ना, इसकी, इसका बेटा जो होगा तुझे मृत्यु काल, अरे तू मृत्यु से क्यों डरता है, मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु तो आने ही वाली है, अभी नहीं तो 100 साल के बाद, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जन्म लेने के बाद कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए ये तो मर जाएगा, और अरे सब तो मरने वाले, कोई भविष्यवाणी, भविष्य को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ना साधारणतः हम लोग जब कलेक्शन के लिए जाते थे तो कोई भी कोई बड़ा ऑफिस में जाते तो ऑफिस का गेट कीपर होता है ना, महाराज हाथ देखो ना, मेरा हाथ देखे, तो जैसे वो देखते ना पंडित जी हाथ देखो, उनको एक ही मालूम है, सारे जो नॉर्थ इंडियन है वहां जो गार्ड होते हैं उनको एक ही, पंडित जी को देखा तो हाथ दिखाना, पंडित जी हाथ देखो। तो एक बार मेरे साथ कृष्णानंद प्रभु थे तो हम दोनों जा रहे थे कलेक्शन के लिए, तो मेरे को था कलेक्शन से लेना है इसको, क्या पंडित जी हाथ देखो, मैं बोला हाथ हाथ नहीं देखते हम लोग, अभी कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, कृष्णानंद प्रभु पंडित जी हाथ देखो ना, पंडित जी हाथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार चीज तो आने वाली है तुझे। वो डर गया एकदम, बोले महाराज ऐसा क्या बोल रहे, बोले हाँ मृत्यु आने वाली है, एक तरीका है क्या, हरे कृष्ण महामंत्र बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कृष्णानंद प्रभु आपके संग में हो एक मिनट और आपने हरिनाम नहीं लिया, ऐसा हो नहीं सकता, तो वॉचमैन को तुरंत हरिनाम ले लिया उसने। पर ये कोई नई बात नहीं है, और हाथ देखने की जरूरत नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, आपको देखना ही पड़ेगा कोई भी क्यों ना हो आप, तो नई बात नहीं है। तो प्राणी नाम ध्रुवम ये निश्चित है, पर मरने से पहले तू ऐसा कार्य करने में क्यों रत हो रहा है जो तुझे अधोगति प्राप्त करेगी, ये लॉजिक है। देखो मृत्यु तो आने वाली है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती, सत्निमित्ते मतलब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, फूल, किसी ने आपको एक गुलाब का फूल दिया, ये गुलाब का फूल ज्यादा से ज्यादा कितना दिन टिकने वाला है, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन टिकता है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद अपने आप झड़ने लगता है। अगर आप फ्रिज में भी रखो उसके बाद निकालो तो थोड़ा भी अगर थोड़ा हिल गया, एक माला दूसरे व्यक्ति को पहनाया तो खड़खड़ सब झड़ जाता है, पूरा ट्रेल लग जाता है। तो फूल ज्यादा से ज्यादा उसका जीवन कितना है, 3-4 दिन, 2 दिन या 3 दिन, पर वो फूल को अगर भगवान के चरणों में आपने लगा दिया तो उसका उद्धार, उसके वंश का उद्धार, जिस पेड़ से आए वो पेड़ का उद्धार, क्योंकि उसका बेटा गया तो 21 पीढ़ी उस पेड़ का 21 पीढ़ी उद्धार। न केवल इतना, क्योंकि आपने वो फूल लगाया आपका उद्धार हो जाएगा, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यमे भक्तार परिचति, पर उसी पुष्प को लेकर आपने अगर किसी आपने प्रियतमा के सर पे लगाया, हुआ थोड़ा फायदा हुआ, प्रेयस श्रेयस नहीं मिला। तो इस तरह से सन्निमित्ते वरम त्याग, वैसे भी ये शरीर जाने वाला है, पर जाने से पहले इसको ऐसी चीजों में लगाओ हमेशा हमेशा के लिए फायदा हो। ये तो चला जाएगा, पर ये जाने से पहले इसको ऐसा उपयोग करो कि वो पापराज, पापराज का कहानी किसने बताया आपने दो दिन पहले संडे को, महायोगी प्रभु ने अनाउंस किया, ये पापराज की कहानी है ये, कि अम्बरीश महाराज के भाई थे कोई, कहते हैं पापराज, इसका नाम था पापराज, कैसा नाम है पता नहीं, किसने दिया वो भी नहीं मालूम। तो पापराज किसी के पास गया और उसने पूछा कि एक क्षण का सत्संग का प्रभाव क्या है, एक क्षण का सत्संग का प्रभाव क्या है। नहीं, किसी ने बोला था उनको, पापराज को, हाँ नारद मुनि के साथ मिले तो बोले एक काम करना, जब तू तेरी मृत्यु हो जाएगी ना, यमराज के पास जाएगा ना, तो एक पूछना कि एक क्षण के भक्तों का संघ का असर क्या हुआ, क्योंकि नारद मुनि से मिले थे। तो गए मृत्यु के बाद यमराज के पास, यमराज ने पूछा इसको, तुझे अभी दंड देना है तो तेरी कोई अंतिम इच्छा है क्या, पहले पाप या पहले पुण्य होगी, बोले नहीं पहले मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो बस, एक क्षण भक्तों का, शुद्ध भक्त भगवान के भक्तों का संघ का एक क्षण का फायदा क्या है। तो बोले मेरे को नहीं मालूम, पूरा उसका महिमा मेरे को नहीं मालूम, ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी से, शिव जी, शिव जी, ऐसे करते करते बोले विष्णु के पास जाएंगे, वैकुंठ चले गए वो क्लैरिफाई करने के लिए। तो विष्णु ने सुना, देखा और कहा कि एक काम करो, पापराज को इधर ही बैठने दो मेरे साथ, तू लोग सब जाओ नीचे, ब्रह्मा जी आप जाइए अपना अपना सेवा कीजिए सब लोग, पापराज इधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक क्षण के संग के कारण उन्होंने एक ऐसा प्रश्न बोला जो यमराज से पूछा, यमराज को उसका उत्तर नहीं था, और वो संग का असर क्या था, भगवान का नित्य शाश्वत संग। तो कहानी का मतलब ये है, उसका सार ये है कि हमारा जीवन और हमारा शक्ति, कुछ आयु है निर्धारित है, पर उसके अंदर कहां उसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे अनंत काल का फायदा या अंत के बाद अनंत काल तक नरकीय निवास। तो इनका कहना है वसुदेव का कि कंस वैसे भी तू मरने वाला, आकाशवाणी वैसे भी हो गई तेरी, ठीक है, तो उससे पहले तू और क्यों बुरा काम कर रहा है, अभी तो सुधर जा ठीक से, पर वो सुनता नहीं है, और इसीलिए अलग अलग तरीके से। और यहां बहुत सुंदर से देखिए, दशम स्कंद है ये, दशम स्कंद के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी गीता के प्रथम स्कंद में जाते हैं, प्रथम अध्याय में जाते हैं। वसुदेव कह रहा है कंस को कि कंस, दो उदाहरण देते हैं, एक आदमी चलते चलते एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर उठाता है कि नहीं, दोनों हवा में नहीं रखता आदमी, एक पैर रखने के बाद दूसरा उठाता है, फिर दूसरा रखता है, तीसरा उठाता है। बोले इस तरह से हे कंस, एक शरीर, ये शरीर छोड़ने से पहले हमारा दूसरा शरीर तैयार हो जाता है, दूसरा शरीर तैयार होने के बाद ये शरीर हम छोड़ते हैं। दूसरा उदाहरण देते, एक पत्ते से अगर पत्ते के ऊपर जो कीड़ा है वो दूसरे पत्ते पे जाना है तो दूसरे पत्ते को पकड़ने के बाद इस पत्ते को छोड़ता है। इस तरह से इस शरीर छोड़ने से पहले तू दूसरा शरीर तेरा बन जाता है। तो मेरे को ये प्रश्न था, ये शरीर छोड़ने से पहले दूसरा शरीर तैयार, और तैयार होने के बाद, यहां जैसा दूसरा घर तैयार होने के बाद आप ये घर छोड़ोगे ना, ऐसा नहीं कि प्रभु जी बोले कि चलो एक घर छोड़ देता हूं और वो घर अभी बनाएंगे, सब सब जाके मिलके बनाएंगे, अरे बनाते बनाते क्या होगा, कहां रहोगे तुम। तो वसुदेव जी कहते हैं दूसरा शरीर तैयार होने के बाद हम ये शरीर छोड़ते। तो बोले ऐसा कैसा, दूसरा शरीर कैसा तैयार हो सकता है। इसको एक समझने का एक तरीका है, समझ लीजिए एक लड़का चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, अप्रैल 13 तारीख को एग्जाम है और 13 तारीख को वो तैयारी किया और एग्जाम लिखा, पेपर लिख दिया, जब वो पेपर लिखा उसका रिजल्ट हो गया, रेडी हो गया, और जैसे उसने सुपरवाइजर को उस पेपर लिखा हुआ एग्जाम पेपर हैंडओवर किया, इसका मतलब उसका रिजल्ट निश्चय हो गया, हो गया अगले क्लास में जाएगा कि यही क्लास में रहेगा, निर्णय हो गया जिस दिन वो लिखा और पेपर को हैंडओवर किया। पर अनाउंसमेंट कब होता है? जून 13 तारीख को, 2 महीने के बाद अनाउंसमेंट होता है। पर निर्णय कब हुआ उसका? जिस दिन उसने पेपर लिखा। यम्यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस भावना से आप शरीर छोड़े हो आपका अगला शरीर निश्चय हो गया है, सिर्फ समय की बात है, 9 महीने के बाद वो प्रकट होगा या 9 साल के बाद, जो भी है। वो यमराज से पूछे, मुझे डिटेल नहीं मालूम, फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट सम्यमणि। तो अच्छा, और वो एग्जाम की तैयारी कब हो रही है? पूरे साल भर तैयारी होती है, ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है अभी खोल के बुक खोल के बैठेंगे, नहीं। एग्जाम निर्णय करता है कौन से शरीर में जाएंगे, और एग्जाम की तैयारी पूरे साल होती है। इसी तरह से मृत्यु निश्चय करता है कि कहां हम लोग जाएंगे, उसी समय निश्चय हो जाता है, और मृत्यु की तैयारी अभी से चल रही है। अभी आप जो करेंगे, यानी हर क्षण आप अगले शरीर की तैयारी कर रहे हो, कर चुके हो, आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से आपने दूसरा शरीर तैयार कर दिया है। करने के बाद ही शरीर छोड़ते हो, केवल समय की बात है, ट्रांसफर का कार्ड कब आएगा और आपको ऑफिशियली कब बैठाया जाएगा उधर। बीच में छुट्टी के समय ऐसा लटकते रहना पड़ता है, एंग्जाइटी, कहां जाएंगे नहीं मालूम, रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि एक अंश अभी भी तू अपनी अगले शरीर की तैयारी कर रहा है। जैसा तूने देवकी का सर काटा, नरक में तेरा जन्म हो जाएगा, बस समय की बात है। ओनली टाइम सेपरेट्स यू फ्रॉम योर हेलिश एग्जिस्टेंस। इसीलिए प्रभुपाद जी वो कहानी बोला करते थे कि 4 लोग साधु के पास गए, एक ब्रह्मचारी गया, एक साधु गया, एक क्या बोलते हैं कसाई गया, और दूसरा राजकुमार गया। एक राजकुमार को साधु ने बोला कि तू मर भी मत, नहीं तू लंबा जी, दीर्घायुष्मान भव, राजकुमार को बोले। ब्रह्मचारी को बोले जल्दी मर जा तू, और फिर साधु को बोले जीना है तो जियो, मरना है तो मरो, और कसाई को बोले तू जी भी मत और मर भी मत। बोले ऐसे कैसे वरदान? राजकुमार को बोले कि तू लंबा जी, क्योंकि अभी बहुत भोग कर रहा है, पर किस तरह से तू भोग कर रहा है, बाद में तू नरक में जाएगा, इसलिए तू जितना जीना है जी ले अभी। तो यह आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसा जीवन जो है तेरा नरक का जीवन तैयार कर रहा है तू। अब ब्रह्मचारी को बोले तू जल्दी मर जा, इतना तपस्या कर रहा है तू, अभी मरते ही तेरा भगवत धाम में, तो जल्द से जल्द मर तू। और साधु को बोले तू जियो या मरो कुछ फर्क नहीं, क्योंकि जीते जी तू हमेशा स्मरण करते रहता है भगवान का, और वहां जाके भी वही करने वाला है, तेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीना या मरना एक ही है। और कसाई को बोले तू जी भी मत मर भी मत, क्योंकि जीते जी तू नरक में निवास कर रहा है, हमेशा चिल्ला रहे हैं, क्या बोलते हैं वो पशु चिल्ला रहे हैं, खून है, लाश पड़ा हुआ है सारे ओर, और तू मरने के बाद भी जो गति है वहां भी तेरा ऐसे ही है, सब जगह चिल्लाते रहेंगे लोग, और सब जगह खून होगा, सब जगह मुर्दे पड़े रहेंगे, लाश पड़े रहेंगे, मार काट चलता रहेगा। तेरा जीना भी और मरना भी कुछ फर्क नहीं, तू जी भी मत और मर भी मत, क्योंकि दोनों तेरे अधोगति ले जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सरल है पर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि हर क्षण हम दूसरा शरीर तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन हम शरीर छोड़ते हैं 100% दूसरा शरीर फिक्स हो गया है, फिक्स होने के बाद ही हम शरीर छोड़ते हैं, सिर्फ समय की बात है कैसा शरीर मिलेगा। ध्रुव महाराज जैसे शरीर छोड़े या हजामिल जैसे शरीर छोड़े, तो स्नान करते के बाद ही आध्यात्मिक शरीर तैयार होकर यहां से भेजते हैं। कई लोगों का ऐसा हुआ, वो छोटे कुत्ते के पिल्ले को महाप्रभु ने अगला शरीर दे के यहां से भेजा, समय की बात है बस। पर फिर भी वसुदेव का कहां सुनता, वो कहां सुनता, सुना नहीं उसने। और तब वसुदेव ने अंतिम कहा कि ठीक है, देखिए एटलीस्ट अपनी ओर से प्रयास अंतिम क्षण तक करना चाहिए। अगर आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है तो वसुदेव और देवकी जैसी चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी कृष्ण जन्म लेंगे हमारे द्वारा हमारे हृदय में। तो ये वसुदेव और देवकी का प्रसंग पढ़ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से कुछ सीखना चाहिए। अपना प्रयास अंतिम तक नहीं छोड़े वसुदेव जी, हताश नहीं हुए, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, निश्चय था आकाशवाणी हुई है, होंगे जरूर कृष्ण आएंगे, पर अरे कौन सभी देवकी को ही मार दिया तो कैसा जन्म लेंगे, मुझे नहीं मालूम कैसा लेंगे, पर मेरा अभी कर्तव्य है देवकी को बचाना, हो सके तो पुत्रों को बचाना, पुत्र नहीं बचेंगे तो कम से कम देवकी को बचाना। अंतिम क्षण तक प्रयास नहीं छोड़े, पहले एक प्रयास किया वो नहीं हुआ, मृत्यु के डर दिखाया वो भी नहीं हुआ, अंत में कहे कि हे कंस चल विन विन सिचुएशन, हमको दूसरे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सचमुच में आप देखेंगे ना, दूसरे ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम महाभारत रामायण और भागवत पढ़ेंगे तो दूसरे कोई भी फालतू ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हजारों मैनेजमेंट पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि लोगों को प्रचार करने के लिए, लोगों को कृष्ण भावना में लाने के लिए ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट ठीक है, वो मैनेजमेंट गीता में है। अगर इसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे, न केवल वो पॉइंट स्वीकार करेंगे साथ साथ में वो शास्त्र को स्वीकार करेंगे। ये कादंबरी कहां से आए, ये कादंबरी का कॉन्सेप्ट, नॉवेल, नॉवेल का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट वैदिक संस्कृति में नहीं था। हमारी चर्चा चल रही थी परसों, हम लोग जब सीएसवी रिट्रीट के लिए गए थे वहां हमारी चर्चा चल रही थी कि वैदिक शास्त्रों में, मैं वो पॉइंट लिखा हूं, मैं बड़ा महत्वपूर्ण चीज है आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि वैदिक ग्रंथों में व्यक्ति क्यों पुस्तक पढ़ता है, रस का आस्वादन करने के लिए और कुछ सीखने के लिए, महत्वपूर्ण ज्ञान सीखने के लिए और रस का आस्वादन करने के लिए, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, रोमांस पढ़ते हैं। क्यों रोमांस पढ़ते हैं, एक रस, रोमांस में एक रस होता है। अच्छा वर्ल्ड वॉर की कहानी पढ़ते हैं, क्यों, वीर रस, किसी का मर्डर, मर्डर का या उपन्यास पढ़ते हैं, शर्लॉक होम्स जासूसी का उपन्यास, क्यों, उसमें एक तरह का अलग प्रकार का रस, बीभत्स रस, उसके बाद उसमें अलग अलग प्रकार के रस। पर आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे, देवामृत महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कृष्ण लीला हैज ऑल द रसास, सारे रस हैं इसके अंदर, सारे रस हैं, 12 रस हैं जो दूसरे कहीं भी नहीं है, कोई भी पुस्तक में आपको 12 रस नहीं मिलेंगे, वैदिक ग्रंथों में मिलेंगे। आपको रोमांस चाहिए पढ़ो, आपको एडवेंचर चाहिए पढ़ो, आपको वीर रस चाहिए पढ़ो, महाभारत पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको, अगर सही तरह से सही भावना से अगर अध्ययन करेंगे, सब कुछ है इसमें। अरे हम नहीं, नास्तिक लोग भी कृष्ण लीला सुनना चाहते, खास रास लीला, उनको भी इसमें रस मिलता है। सिर्फ वो सोचते हैं कि मैं अगर कृष्ण होता तो कितना अच्छा होता, सिर्फ वो फोटो हटा के मेरा फोटो वहां लगा देता और 8 गोपियां मेरे साथ होती हमेशा हमेशा के लिए अष्ट सखियों के साथ, वाह, कम से कम वो इच्छा से कृष्ण लीला में आएगा वो, इतना रस है इसमें, सब प्रकार के 12 रस इसमें है। तो एक, जबकि इसमें रस है ही नहीं, इसमें रस भी हैं तो ये रस जो है शुद्धिकरण नहीं करते बल्कि काल्पनिक होता है। दूसरी बात, शास्त्र में एक चीज समझ में आता है, हमको असुर नहीं बनना है, हमको सुर बनना है। रावण इज ऑलवेज ए विलन, कर्ण इज ऑलवेज ए विलन, खलनायक है वो, शास्त्र पढ़ने के बाद आप रावण बनना नहीं चाहेंगे, रावण का अनुकरण नहीं करना चाहेंगे, कंस का अनुकरण नहीं करना चाहेंगे, कर्ण का अनुकरण करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो असुरिक प्रवृत्ति है, वो प्रतिकूल है भगवान के जीवन के अंतिम लक्ष्य के लिए। पर दुर्भाग्यवश कादंबरियों में जो एक नायक होता है वो हम आप जैसा व्यक्ति होता है, कभी बुरा भी करता है, कभी बुरा भला भी करता है, कभी कंफ्यूज हो जाता है, वो सब पढ़ने के बाद उसके जैसा बनेंगे तो हमारी भी वही स्थिति है। बुरा क्या है, भला क्या है, कुछ नहीं। कभी मर्डर भी करता है, कभी दान भी देता है, कभी वो भी करता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आता है। एटलीस्ट शास्त्र पढ़ने से, भले वो महाभारत हो, महाभारत में बहुत सारे धर्मार्थ काम मोक्ष बहुत सारे बताए गए, केवल उसको सुनाने वाला, अच्छी तरह से समझ के समझाने वाला वो कम है आजकल। और शास्त्र पढ़ने में एक डिसिप्लिन होता है, कादंबरी पढ़ने में डिसिप्लिन है, सोते सोते जाते इधर कुछ भी करते नहीं, शास्त्र रेगुलरली पढ़ना है हमारी शुद्धिकरण के लिए। शास्त्र आप रस का आनंद कर रहे हो, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हो डिसिप्लिन तरीके से, नित्यम भागवत सेवया, और बड़े गंभीरता से और प्रार्थना करते हुए इस भावना से। जबकि कादंबरी पढ़ने में न ज्ञान मिलता है और रस भी जो है विकृत रस है, वो उसका विकृत प्रतिबिंब है, और कोई डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है। तीसरा, ऋषि दर्शन को हमेशा, सिद्धांत को हमेशा, कई काल्पनिक भी है शास्त्र में भी, जैसा भागवत में ये चौथे स्कंध में पुरंजन व्याख्यान, पुरंजन व्याख्यान काल्पनिक है, पर काल्पनिक जो कथा भी आती है जहां कल्पना की गई है, ऋषि दर्शन यानी सिद्धांत को ज्ञान ध्यान में रखते हुए किया गया है, सिद्धांत के विरुद्ध कभी नहीं जाता है, सिद्धांत को हमेशा दर्शित करता है। पर यहां जो कल्पना है ये केवल काल्पनिक है, उसका जो कंफ्यूजन है वो नायक के कंफ्यूजन को करा दिया, बस उसको उसने बड़ा हीरो बना के रख दिया, और उसका भी वही कंफ्यूजन है, भगवान है कि नहीं, कि है कि नहीं, बस ऐसे आधा ही में छोड़ दिया बस। और उससे भी क्रूर, सबसे खतरनाक, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं तात्पर्य में, जब आप शास्त्र को लेकर, ऋषि दर्शन को, सिद्धांत को छोड़कर उसमें अपना मनोकल्पनिक चीजें डालकर प्रस्तुत करते हो, जो तथाकथित मिशनरी लोगों ने किया, यह सबसे बड़ा। अगर शत्रु बंदूक लेके आए सामने तो चलेगा, मित्र के रूप में आए और पीछे मुड़ने के बाद पीछे से चाकू लगाए, सबसे खतरनाक शत्रु है वो। मुगल साम्राज्य के लोग तो सीधा शत्रु हैं बोल के आए, पर ये ब्रिटिश साम्राज्य लोग ऐसे नहीं थे, उन्होंने अपने लोगों को, दार्शनिक लोगों को भेजा शास्त्र को अध्ययन करके, उसमें से दो चीज की, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग, थोड़ा थोड़ा करके पॉइजनिंग। कैसा पॉइजनिंग किया उन्होंने, महाभारत और रामायण में आप लोगों को दिलचस्पी है, आप तो पढ़ेंगे, आप हमेशा पढ़ते हो उसको, सर सर रख के प्रणाम करके फिर पढ़ते हो ना, तो उसी चीज को लिया, उस चीज को लेकर जहां जहां भगवान तथाकथित रूप से कुछ धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, रासलीला या झूठ बोलकर किसी को मारना अलग तरीके से, जो ऋषि तत्व के अलावा सर्वधर्मान परित्यज सर्वोच्च स्थिति है, भगवान की महानता वही है, उसको उन्होंने एक शंका डाल दिया उधर, कृष्ण ऐसा नहीं करना था, एक थोड़ी सी गलती हो गई बेचारे, नहीं तो कृष्ण अच्छे, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्ण बहुत अच्छे, थोड़ा रासलीला। तो आज हम रासलीला भगवान ने किया कहने के लिए थोड़ा हिचकिचाते, संकोच होता है, नहीं नहीं वो छोड़ दीजिए, वो छोड़िए, पर्दा बंद कर दीजिए, ये इधर देखिए ना, भगवान ने गीता सुना, नहीं नहीं वो रासलीला, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, बच्चे को बोलते हैं ना उधर मत देख, इधर देख, ये क्यों हमारे हृदय में आ गया है इन लोगों से। और जहां जहां असुरों ने थोड़ा बहुत एक अच्छा थोड़ा दर्शन दिखाया, उसको उन्होंने बड़ा किया है, बेचारा दुर्योधन, बेचारा कर्ण, उसके प्रति कितनी अन्याय, उसके प्रति कितना अन्याय हुआ। मरते वक्त भी दांत अपना सोना का निकाल के दे रहा है, मृत्युंजय क्या कर्ण। छे, अर्जुन को ऐसा नहीं करना था, भगवान को ऐसे नहीं करना था। यानी शास्त्र के प्रति धीरे 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 सम्मान चला जा रहा है हमारा। कादंबरियों के द्वारा, शास्त्र के ही द्वारा दिया हुआ, पर कादंबरी का तत्व यानी मनोकल्पना, काल्पनिक सिद्धांत, अपना काल्पनिक विचार। तो इस तरह से दुर्भाग्यवश आज हमारी परिस्थिति ऐसी होगी। दो चीज अंग्रेजों का, जब शास्त्र पर से कृष्णा द वॉर मॉन्गर, मतलब वो चाहिए था उनको, उनको शांति दूत केवल नाटक था उनका, बस शांति दूत, शांति दूत कुछ नहीं, मारना ही इच्छा था उनका, मतलब वॉर मॉन्गर जैसे कुछ थे ना, मतलब उनको खुजली, लड़ने की खुजली बस। जब बाणासुर था ना, हजार हाथ, क्या करना समझ में नहीं आता, लड़ो लड़ो मेरे साथ, हिरण्याक्ष भी ऐसे, लड़ो लड़ो वरुण देव तुम्हें, तुम नहीं तो और कोई लड़ो, कोई मेरे साथ लड़ो, वॉर मॉन्गर। तो कृष्ण को भी ऐसे, बस उनकी खुजली थी लड़ाई करना, बस इनको इनको लड़ा के आराम दे करना, बस आनंद देखना। कृष्णा द वॉर मॉन्गर एंड कृष्णा द एमरस लवर, किसी की पत्नी के साथ भी कुछ भी व्यवहार करो, मजा करो। तुम लोग पूछते हो, पर ठीक है आप लोग पूछो, आप लोग ठीक है पत्थर उत्थर की मूर्ति को ठीक है, पर देखो उन्होंने ऐसा किया, मैं ठीक है आप लोग पूछते हो, आपका सम्मान देते। इस तरीके से धीरे 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 स्लो पॉइजनिंग करके आज हम हिचकिचाते हैं लोगों को ये तत्व ज्ञान देने की, ऐसी परिस्थिति। पुराण बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुराण, पुराना मतलब बहुत पुराना, बट हमेशा फ्रेश। पुराण कैसा है आज भी मालूम है, रामायण क्या है सबको मालूम है, हिंदी फिल्म जैसा ही है, महाभारत भी वैसे ही है, पर आज भी वो फ्रेश है, ओल्ड बट फ्रेश। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्यों स्वादु स्वादु पदे पदे? क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, परम सत्य से संबंधित है, सिद्धांत से संबंधित है, और इसीलिए स्वादु स्वादु हर रोज हर क्षण नया नया लगता ही है। भले वही पुराना चीज है, पुराणिक स्टोरी है, पर आज भी उसमें नए नए चीज सीखने को मिलते हैं, अपनी अपने शक्ति के अनुसार, अपनी क्या बोलते हैं, जितनी आपकी विचार की शक्ति है उतना आप इसको ग्रहण कर सकते हो। पर नॉवेल हमेशा नया नया, ये पुराना हो गया अभी कुछ नया, कुछ तो नया। प्रभुपाद ने कहा तुम लोगों का ये खुजली, अमेरिकन लोगों का, कुछ तो नया करो, कुछ तो नया करो। अरे वही चीज करो ना, नवनवायमानम, वही मंगल आरती अच्छा है। नहीं नहीं, कुछ नया चीज करेंगे आज से, कल बोलोगे कुछ नया मंत्र जपेंगे, बहुत हो गया एक ही मंत्र कितना जपना है। नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज एवर फ्रेश। बट जब अपनी काल्पनिक चीजों से कुछ बनाते हैं, ऐसी कथाएं बनाते हैं, ये कादंबरी कितने बार पढ़ोगे आप? नया नया लगता है, पर पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, वही पुराना चीज है, वही पुराना चीज है, सिर्फ पैकेज नया है, नया नया पैकेट में डाल के घुसा के वही खिला रहे हमको, वही चीज। तो इसमें हमको नहीं फंसना है। तो जब तक कोई अगर हमको ज्ञान नहीं देता है इन चीजों के प्रति, तो कैसे समझेंगे? तो यहां सब कुछ है, आपको विन विन सिचुएशन मैनेजमेंट में चाहिए तो यहां देखो वसुदेव को, ठीक है तेरे को क्या चाहिए दुर्योधन, तेरे को क्या चाहिए, अरे कंस तेरे को क्या चाहिए, तेरे को वो आठवां बच्चा तेरे से खतरा है ना, इसको क्यों मार रहा है यार, देवकी को क्यों मार रहा है? This is politics, but politics used for Krishna's sake. तेरा अपयश हो रहा है, तेरा नाम खराब हो रहा है, तू नरक में जा रहा है, बच्चे को मारना, अरे तेरे को मैं आठों बच्चा ला के दूंगा, तू इसको क्यों मार रहा है, तेरी बहन है ये, this is win-win situation. कंस जैसे क्रूर व्यक्ति को भी कृष्ण भावना भाव देना, बचाना। और ये झूठ नहीं बोल रहे, किस लिए झूठ बोल रहे हैं? झूठ भी बोल रहे हैं, बच्चे को झूठ बोलता है। ये कड़वा जो दवाई है, अगर आप बच्चे को बोलेंगे बेटा ये कड़वा है मुंह खोल, नहीं खोलने वाला। उसको स्वीट कोटिंग देके बेटा स्वीट है, टॉफी है, मुंह को कड़वा, चुप हो जा मुंह, तेरे लिए अच्छा है। ये सब कहने के कारण देवकी जैसे अपनी अपनी बहन को उसकी शादी के दिन उनके ऊपर पूर्ण निर्भर है, उससे बचा रहा है, नारकीय स्थिति से बचाया। क्या गलत किया वसुदेव ने? और कृष्ण, अगर तू अगर वसुदेव को भी मार देता और कृष्ण को, देवकी को भी मार देता, फिर भी मरने वाला था, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है वेद वाक्य, वो तो बदल नहीं सकते आप। पर वो करने से पहले तू और ज्यादा क्यों पाप कर रहा है, ये तो मत कर कम से कम। तेरे को आठवें से मतलब मैं मिलाऊंगा। दिस इज रियल पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स फॉर कृष्णा। तो एक भक्त को पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, पर अगर हजार लोगों को इससे फायदा हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है, उस क्षण के लिए एक स्थिति में सिर्फ उसको उपयोग करके उसको फेंक देने का, बस और कुछ नहीं। एक कांटे को निकालने के लिए कांटा लेके निकालो, दोनों को फेंक दो, बस। तो कांटे जैसी चेतना जो बन गई है, जो उस व्यक्ति के लिए भी बाधा है भक्ति में प्रगति करने के लिए, उस व्यक्ति के उस कांटे को निकालने के लिए दुर्भाग्यवश हमें कांटा हाथ में लेना पड़ता है। एक भक्त को एक हाथ में कांटा लेना पड़ता है, और उस केवल किस लिए, उस कांटे को निकालने के बाद, और दोनों को निकालकर दूर फेंक देना है, बस। इस तरह से वसुदेव ने सामदान दंड भेद, दंड को छोड़कर ये सामदान भेद का उपयोग किया एक ही उद्देश्य से, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और सबका भलाई हो, सब लोग कृष्ण की शरण जाए, दुनिया का भला हो, बस। तो इस तरह से ये प्रसंग में हम देखते हैं कि बहुत सुंदर से वसुदेव प्रयास करते हैं और यशस्वी होते हैं। कम से कम अभी के लिए तो टाल दो उसको, बोले ठीक है, और वचन देते हैं कि कंस मैं तुझे एक एक बच्चा भी लाके दूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है, कंस विश्वास करता है वसुदेव के ऊपर। कंस जैसा शत्रु वसुदेव के ऊपर विश्वास, क्यों? ये भक्त है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक बार इसके मुंह से कुछ वचन निकला है तो इसका पालन करेगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, देखिए। धीर अधीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत सरो पूजित हो। झूठ बोलने के बावजूद भी कैसा, क्यों? क्योंकि निर्मत सरो, मत्सरता से झूठ नहीं बोला वसुदेव ने। उनके हृदय में मत्सरता नहीं थी, भेदभाव नहीं थी, कंस के लिए भी भलाई का विचार था, और इसलिए उन्होंने उपयोग किया इस कांटे का। निर्मत सरव पूजित, जब तक हृदय में मत्सरता होगी, जो भी हमारे हाथ में आएगा, अगर हमारे हाथ में पवित्र से पवित्र चीज भी हमारे हाथ में आ गया, अगर हृदय अशुद्ध है तो वो पवित्र चीजों को भी अशुद्ध बना देंगे हम लोग। पर अगर हृदय शुद्ध है तो फिर अपवित्र से पवित्र, अपवित्र चीजों को भी लेकर पवित्र में परिवर्तित कर सकते हैं। ये वसुदेव के द्वारा देखते हम। तो वसुदेव के ऊपर विश्वास था, कंस के ऊपर विश्वास नहीं था। और जब कंस ने कहा ठीक है, पहला बच्चे को लाके दिया उसने कीर्तिमान को, नहीं 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 तू ले जा वापस, वसुदेव को विश्वास नहीं था, बोले नहीं। हाँ, राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में करते हैं, बोले भक्तों का वचन कैसा है, पत्थर के ऊपर लकीर, और असुरों का वचन कैसा है, पानी के ऊपर लकीर। मारते मारते ही बिमिट जाता है। तो कंस अभी बोला, अनार्द मुनि आए, थोड़ा भड़का दिए, हा तेरा स्वार्थ क्या कर रहा है तू, छोड़ मत, मार दे, कोई भी हो सकता है इसमें, सब भोजवंश यदुवंश में सबके सब आ रहे हैं देवतागण, अभी मैं वहां से आ रहा हूं, मीटिंग हुआ था अभी उन लोगों का मीटिंग चला था, ब्रह्मा जी ने पूरा देवताओं को लेकर गए थे, विष्णु आए, प्रिसाइड किए, रिबन काटे और बोले मैं आ रहा हूं, तुम लोग सब जाके तैयार हो जाओ अपना अपना यदुवंश में। सबके सब देवी देवता है, कोई भी हो सकता, मार डालो। उठ को एक क्षण के अंदर वचन बदल दिया उसने। फिर कहानी सबको मालूम है, ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा। तो कंस मारते गया, छह बच्चों को मारा। और एक बहुत अच्छा इसमें सीखने वस्तु है, हाँ रूपा जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि पहले छह बच्चे मारे गए, वो छह बच्चे मरीची के पुत्र थे, असुर थे वो, एक्चुअली मरीची के पुत्र थे जो हिरण्यकशिपु के पोते बने। फिर हिरण्यकशिपु का उनको शाप मिला, उन्होंने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया मरीचियों के पुत्रों ने, तो हिरण्यकशिपु के पोते बने। हिरण्यकशिपु का शाप हुआ कि तुम्हारा पिता ही तुम्हें मारेगा। कालनेमी के पुत्र थे ये लोग, कालनेमी कंस बना और ये छह पुत्र देवकी के गर्भ में आए, छह पुत्रों को मार दिया, असुर थे वो एक रूप से। तो सवाल ये उठता है कि जहां भगवान उस गर्भ में कैसे प्रवेश कर सकते हैं जहां ये असुर है, छह असुर आए, दूषित किया हुआ स्थान, वहां भगवान कैसे आ सकते हैं? तो उसके तात्पर्य में सबसे पहले प्रभुपाद जी समझाते हैं, आचार्य भी समझाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, के पूरी सृष्टि भगवान की ही, मत्स्थानी सर्वभूतानी नचाहम तेषु अवस्थितः, मैं सब जगह हूं पर सब जगह से अभिन्न अलग भी हूं। तो उन्होंने उसको होकर भी नहीं है भगवान इस संसार में, तो प्रवेश करते हुए भी नहीं प्रवेश किए, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और दूसरा तत्व यह है कि कृष्ण की लीला में भौतिक और आध्यात्मिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हार्मोनियस कॉम्बिनेशन, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। और जैसे 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 भक्ति में प्रगति होती है, भौतिक और आध्यात्मिक धीरे 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 दूर चला जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे देवकी के गर्भ में षडगर्भ हुए, षडगर्भ गए, तत्पश्चात बलराम जी आए, फिर रोहिणी के गर्भ में गए, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और कंस ने उस छह बच्चों को मारा। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं कि हम जब साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर अभी दो प्रकार की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भी है और आध्यात्मिक इच्छाएं भी है। 100% कोई नहीं कह सकता, एटलीस्ट मेरे हृदय में तो मैं कह सकता हूं बहुत सारे भौतिक इच्छाएं, पर एक आध्यात्मिक इच्छा है कि नहीं थोड़ा अच्छा भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, कुछ सुधरना है मुझे, नहीं तो हम लोग यहां रहते नहीं, आते नहीं, इतना दिन टिकते भी नहीं। आध्यात्मिक इच्छाएं हैं पर साथ साथ में भौतिक इच्छाएं, मतलब षडगर्भ भी हैं अभी, पर ये षडगर्भ को निकालना चाहिए धीरे धीरे। तो षडगर्भ कैसे निकलते हैं, किसने मारा उन षडगर्भ को? कंस ने। कंस जो है भय का प्रतीक है, भय, एक भक्त को हमेशा भयभीत होना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी भजौ रे मनसि नंदनंदन अभय चरणारविंद रे, हमको तो अभय होना चाहिए, भयभीत क्यों होना चाहिए? बोले ये भय के माया में न पड़ जाएं, ये माया के प्रति जो भय है, ये भय हमारे भौतिक इच्छाओं को दूर करेगा। ये कंस भय जो है कंस का प्रतीक है, जो हमें आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाकर भौतिक इच्छाओं को नष्ट करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए अगर एक डॉक्टर है और वो मरीजों से मिलने जा रहा है, पूरे मरीज जो हैं सबके अंदर संसर्गजन्य रोग, मतलब सबके सब ऐसा छुआ तो खांसा तो आपको बीमार हो जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा अबे क्यों जाऊंगा मैं, वार्ड में जाऊंगा ही नहीं। पर नहीं बोल सकते, नहीं बोलेगा तू जाने, तू डॉक्टर क्यों बना फिर? अगर मुरलीधर प्रभु कहेंगे कि कोई महाराज दांत ठीक, दांत में मर गया, इतना गंदा वासा था, जात। अरे उसीलिए तो आया हूं आपके पास। अगर डेंटिस्ट है तो दांत को देखना पड़ेगा खराब हो या नहीं। डॉक्टर है तो क्या अच्छे लोगों के पास जाएगा, चलो इधर आओ इधर तुम, बोला अच्छा ठीक ठाक हूं भाई। मरीजों के पास तो जाना ही है उसको, और मरीजों के पास मतलब उसको संभावना है उसको बीमारी लगने की। तो जाने से पहले डर के मारे पूरा हैंड में ग्लव्स पहनेगा, पूरा मास्क पहनेगा। और तुरंत आने के बाद मास्क खोलेगा, ये खोलेगा, डेटॉल साबुन से घिस घिस के 8 बार घिस के धोएगा, ताकि थोड़ा भी कुछ है तो ऐसा जल निकल जाए, वो सब कृमि कीटाणु। तो इस तरह से एक भक्त डर के रहना चाहिए इस संसार में। संसार में तो रहना है, संसार छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है, पर संसार में काम करना है। जाने से पहले मास्क लगाओ और ग्लव्स लगाओ। और ग्लव्स लगाने का मतलब क्या, सुबह सुबह सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करके जाओ, अपने उद्देश्य को समझ के जाओ, किस लिए मैं हूं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, यानी अपना माला वाला सब करो, उसके बाद दुनिया में जाओ। तो क्योंकि आपने एक प्रोटेक्शन लिया है, आप दूषित नहीं होगे। और बाय चांस भी दूषित हो गया, आने के बाद फिर से एक बार स्नान करने का, इसीलिए त्रिसंध्यम बहुत अच्छा बताया गया है, गुरु की वंदना 3 बार करनी चाहिए, त्रिसंध्यम। एक बाहर जाने से पहले सुबह सुबह, और वहां भी बीच में एक बार, अरे किस लिए कर रहा हूं भूल नहीं जाना, और आने के बाद फिर से याद दिलाना हमने आपको। ऐसा अगर सुरक्षित रहेंगे, हमेशा प्रोटेक्शन लेंगे भयभीत, ये भय जो है धीरे धीरे, ये जो षडगर्भ है इंद्रियों के, आंख अच्छी चीज देखना चाहता है, नाक अच्छा चीज सूंघना चाहता है, ये 5 इंद्रियां और मन, विचार, भौतिक विचार, ये षडगर्भ है, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं। और धीरे धीरे, आज हम प्रसाद क्यों खाते हैं, क्योंकि जीवा को अच्छा लगता है, भगवान की कृपा बाद में सेकेंडरी है, पहले कौन सा प्रसाद है, ये महाप्रसाद का, ये प्रसाद प्रसाद वो है, अभी हम उस स्तर पर नहीं है। कुछ भी मिला, विष भी मिला तो चरणामृत में पियेंगे हम लोग, रामानुजाचार्य ने पिया, हम नहीं पी सकते। तो अभी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है, हमको अच्छा भी लगता है, साथ में प्रसाद भी है, और प्रसाद नहीं है तो उसको भोग लगा के खाएंगे आइसक्रीम को भी, पर प्रसाद बना के खाएंगे, ताकि वो भी है साथ साथ में, मेरा जो इच्छा है वो भी पूर्ण है, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है अभी। पर धीरे धीरे भय के कारण, नहीं ये नहीं ये नहीं, अनुकूल नहीं अनुकूल नहीं अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चीजों को त्यागो, उसको करते 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 फिर कैसा होगा, शुद्ध हो जाएगा हृदय गुरु की कृपा से, बलराम जी की कृपा से। और धीरे धीरे आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ नीति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, जब कृष्ण प्रेम हृदय में आ जाएगी तो भगवान उस प्रेम से आकर्षित होंगे, स्वाभाविक रूप से भगवान उस प्रेम से आकर्षित होते, भगवान प्रेम से आकर्षित होते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। जब शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति हृदय में आ जाएगी, श्री कृष्णा कर्षणीच सा, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति का 6 लक्षणों में सर्वोच्च लक्षण यह है, श्री कृष्णा कर्षणीच सा, श्री कृष्ण को आकर्षण कर लेती है भक्ति। तो ये तरीका है, भय कंस होना चाहिए हमारे हृदय में, हमारे हमारे सामने, आंखों के सामने कंस कंस कंस, मार देगा बच्चे को, मार डालेगा, डर 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 डर, ये डर तो अच्छा है थोड़ा, फूल्स डेयर वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड, मूर्ख व्यक्ति ऐसा चीज रिस्क लेता है जहां देवतागण डरते हैं जाने के लिए। रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट फूलिश रिस्क। और इस तरह से भगवान आदेश देते हैं योग माया को, योग माया को आज देते हैं, योग माया भौतिक भगवत धाम में, बोले तुम जाओ अभी देवकी के घर में बलदेव हैं, उनको आप रोहिणी के घर में आकर्षित करो, उसके बाद मैं आऊंगा, और तुम वसुदेव यशोदा के घर में रहना, और हम दोनों एक साथ जन्म लेंगे, साथ में आठवें गर्भ के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और तुम उसी दिन प्रकट होना होता। तो बहुत अच्छी तरह से वर्णन है माया के बारे में, बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि वहां किस तरह से। वो बोली मैं कैसे कर पाऊंगी, तो बोले नहीं मेरी आज्ञा। क्या बलराम जी इतने शक्तिशाली, पूरे ब्रह्मांड बलराम जी की एक विस्तृत रूप अनंत शेष के ऊपर सरसों के टुकड़े जैसे सर के ऊपर बैठे, उसका वजन भी नहीं पता चलता बलराम जी को, ऐसे बलराम जी को उठा के एक जगह से दूसरा रखे। अगर एक चींटी को बोले ये वो व्यासासन को, प्रभुपाद जी के व्यासासन को उठा के ना यहां रखो, एक चींटी को हो सकता है? अब 12 लोग हम लोग उठाने चाहिए थे, उसमें थोड़ा घिस गया वो पेंट। बहुत बहुत बड़ी बात है, पर आश्वासन देते हैं चिंता मत कर, मैं तुझे कह रहा हूं ना, By my instruction, you will be empowered. मेरी आज्ञा के कारण तुझे वो शक्ति मिलेगी। बलराम जी जिनके भगवान श्री कृष्ण मतलब पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके हृदय में, उनके पेट में है, दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं, अनंत ब्रह्मांड जो है भगवान, उसको कौन उठा सकता है? पर ये भगवान की शक्ति, अगर भगवान देंगे शक्ति हो सकता है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं इसी तरह से, गुरु की जब आज्ञा पालन, हमें क्या शक्ति है किसी की, एक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन करने की शक्ति हमारे में नहीं है, बोल बोल के थक जाते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चट्टान के ऊपर पानी डालने के बराबर। कभी कभी उनको लगता है मैं सुना था तो कितना अच्छा लगा था, इसको बोल बोल के समझता क्यों नहीं इसको, तुम आत्मा नहीं है, तू शरीर नहीं है आत्मा है। नहीं प्रभु जी, आत्मा ऐसा थोड़ी होता है, किसने देखा? और कन्विंस नहीं कर पाते हम लोग। कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन। तो जब कृष्ण शक्ति संचार करते हैं ना, गुरु की आज्ञा पालन करने हम जाते हैं, पता नहीं कहां से वो शब्द निकलते हैं, हमको भी नहीं समझता हमने क्या बोला, पर 50 साल के बाद वो बोलता है प्रभु जी आपने वो उस दिन वो एक वाक्य बोला ना, उस दिन से मैंने पूरा छूट गया मेरा। क्या वाक्य बोला मेरे को सुना भाई, क्योंकि मेरा अभी तक छूटा नहीं है। वो गुरु की शक्ति है, जब गुरु के आज्ञा को हम पालन करते हैं, कुछ ऐसी शक्ति। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, वो मैं संबंधित चीज है बताता हूं। भगवान यहां जन्म लिए हैं, थोड़ा एडवांस में जा रहा हूं। तो हाँ, देवकी के गर्भ में जब आते हैं, सबसे पहले किसके साथ, वसुदेव के मन में प्रवेश करते हैं, वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसको कहते हैं दीक्षा। जिसके हृदय में कृष्ण है वही हमको कृष्ण दे सकते हैं। वसुदेव के हृदय में कृष्ण प्रवेश किए और इसीलिए वो देवकी के हृदय, देवकी को संचारित कर सके उनके हृदय में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दीक्षा, प्रभुपाद लिखते हैं। जिसके हृदय में कृष्ण, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आछे। केवल ऐसा व्यक्ति जब हमें आज्ञा देता है, उस आज्ञा के साथ कृष्ण अवतरित होते हैं हमारे हृदय में, नहीं तो हमारे अंदर कृष्ण अपने आप आने की शक्ति, कितना भी हम प्रयास कर ले कृष्ण प्रकट नहीं हो सकते। तो वसुदेव के मन में प्रवेश किए, वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में प्रवेश किए, इसमें कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। बहुत बड़ा अपराध है यह सोचना कि शारीरिक के संघ के द्वारा भगवान वसुदेव के शरीर से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पर जब वसुदेव के हृदय में भगवान प्रवेश किए तो उस समय दो शब्द उपयोग किया गया है। वसुदेव जी कैसे लग रहे थे? दुरा सदो अति दुर्धर्षो, वेरी डिफिकल्ट टू सी और अप्रोच थ्रू सेंसरी परसेप्शन, अनअप्रोचेबल, मतलब उसके सामने भी नहीं जा सकते आदमी, देख भी नहीं सकते आंखों उठाकर, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रज्वलित शरीर वसुदेव का हो गया था। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक लिखते हैं, इफ वन इज एम्पावर्ड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड टू डू समथिंग, द कोर ऑफ हिज हार्ट बिकम्स अ धाम एंड दस ही बिकम्स सो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल दैट नॉट ओनली हिज एनिमीज बट ऑल्सो पीपल इन जनरल आर एस्टॉनिश्ड टू ऑब्जर्व हिज एक्टिविटीज बिकॉज ही इज अनअप्रोचेबल। His enemies are simply struck with wonder. अगर एक व्यक्ति को भगवान की शक्ति का संचार हो गया हो, गुरु की कृपा मिली हो, तो उसके हृदय जो है एक धाम बन जाता है, भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान प्रवेश करने के बाद वो इतना शक्तिशाली बन जाता है कि न केवल उसके शत्रु पर जन साधारण लोग भी केवल उसके कार्य को देखकर अद्भुत हो जाते, बोले कैसा हो रहा है। अब देखेंगे प्रभुपाद जी को, ही वॉज एक्चुअली एन एम्पावर्ड पर्सनैलिटी। जहां भी जाते कुछ लेक्चर देते हजारों लोग पीछे पीछे पड़ रहे। कई प्रभुपाद जी के शिष्यों को मैंने सुना है, वो कहते हैं, मेरे को लगता था ये थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं कि प्रभुपाद के प्रति प्रेम है, बोले जब प्रभुपाद के पास पहली बार एयरपोर्ट से आए, ऐसा लगा 100 सूरज एक साथ उग गया हो। मैं कभी जिंदगी में किसी को सामने झुका नहीं, झुकने का कॉन्सेप्ट ही नहीं हमको पश्चात देश में, पर पता नहीं अपने आप में ठाक करके एकदम फ्लैट। कई लोगों ने बोला है, ऐसा नहीं कि एक का सुन के दूसरे ने बोला है, बोले ऐसा ऐसा प्रकाश दिखाई दिया, ऐसा ऐसा व्यक्ति सामने आया, पता नहीं क्यों अपने आप में झुक के प्रणाम किया उनको। तो मेरे को लगता था थोड़ा प्रेम है, इसीलिए थोड़ा, मतलब भक्त लोग होते हैं ना, प्रोग्राम में कितने लोग आए, अरे 4000 लोग आए, अच्छा भावना है, पूरा पैक था हॉल, स्वाभाविक रूप से प्रसाद, सम्चुअस प्रसाद, एक्स्टेटिक कीर्तन, अच्छा है। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता, मेरे को ऐसा लगता था, पर प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं इसकी इस पर्टिकुलर इसके तात्पर्य में के दीप्तिमान एक्चुअली वॉज इफल्जेंट लाइक द सन, अनअप्रोच, देख भी नहीं सकते थे लोग, शत्रु को भी क्या हो जाता था समझ, सामने आके ना वो भूल जाता था मैं किस लिए आया हूं, क्या बोलने आया हूं, क्या मेरे को करना है। मुरलीधर प्रभु कल बता रहे थे वो फिशर मैंशन में जाके प्रभुपाद करोड़ों क्या लाखों डॉलर का चीज है, वो बोलते हैं एक काम करो मुफ्त में दे, मुफ्त में हार्ट अटैक नहीं हुआ यही बड़ी बात है उसको। वो ब्रोकर जो था इन दोनों का, वो तो मुंह टांग गया उसका ऐसा, बोले ये आदमी की क्या है ये। इतना ही नहीं, उनको भी नहीं मालूम कि क्या हो गया, कैसा हो गया, मैंने हाँ भी लिख दिया, साइन भी कर दिया, ट्रांजैक्शन हो भी गया। बोले दिस इज एम्पावरमेंट, सिंपली एम्पावरमेंट। न केवल वो एम्पावर्ड थे, वो जिनको कुछ बोलते थे उसको शक्ति, जैसा महाप्रभु किसी को गले लगाए, वो जाके किसी और को गले लगाया, वो ऐसा किया तो हजार लोग उड़ रहे हैं, उसको भी नहीं मालूम कैसे हो रहा है। इस तरह से जिसके हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं पोटेंशियली, मतलब अप्रकट होने से पहले ही आ जाते हैं, वो व्यक्ति धाम बन जाता है। और वो जहां भी स्पर्श किया, जो भी विचार किया, जो भी बोला, उसके मुंह से जो निकली, लोगों के अंदर परिवर्तन लाने की शक्ति आ जाता है। कैसे आ जाता है उसको भी नहीं मालूम। प्रभुपाद भी कभी कभी बोलते थे, इवन आई डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग बट इट्स हैपनिंग because it is my Guru Maharaj's desire, it is Krishna's desire. Bas, I am simply an instrument. ये एक भक्त में अंतर है। कभी वो नहीं सोचता कि मैंने ये किया, मेरे कारण ये सब हो रहा है, कभी नहीं, क्योंकि वो जानता है हृदय से। इसीलिए अद्भुत चीज करने के बावजूद भी हमेशा वो नम्र रहता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है। ऐसा ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने के बाद भी सचमुच में सोचना कि मैं पापी हूं, मेरा नाम जो लेगा, जगाई मदाई से भी गया गुजरा हूं, विट्ठा से भी ज्यादा नीचा हूं, और साथ साथ में बड़ी बड़ी कार्य भी कर रहा हूं, और सामने से तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सचमुच में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। ये भावना एक शुद्ध भक्त में, इसीलिए भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तू निमित्त बन सकता है, असूयवे, मेरे प्रति असूया नहीं है तुझे। इसीलिए तू एक चैनल बन जा सकता है मेरे द्वारा। तू न केवल तेरे हृदय में कृष्ण प्रकट हो सकते हैं, तू जहां चाहा वहां मैं आ जाऊंगा। महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्तों को बार बार कहा कि कोलावेच श्रीधर मैं बिक गया हूं, मैं तेरा दास हूं, तू जो बोलेगा, तू जहां बोलेगा मैं वहां जाऊंगा, मैं तेरा गुलाम हो गया हूं। और ऐसे भक्त जब इच्छा करे कि यहां एक मंदिर हो, ये लोग भक्त बने। जहां उसका वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त पूरे ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं। वो जब हाथ उठाते हैं कीर्तन में, स्वर्ग लोगों का उद्धार हो जाता है। वो जब नृत्य करते हुए पैर दोनों जमीन पे लगता है तो भूमंडल का उद्धार हो जाता है। और वो अगर जहां भी ग्लैंस, मतलब जहां दृष्टिकोण दृष्टिपात हो उनका, सब जगह लोगों जो यहां भी उनका दृष्टिपात जाए, वो जगह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और वो भगवत धाम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शक्ति है और ये सब कुछ है इसी पहला चार अध्याय में। मैं सोच रहा था सचमुच में कि मैं क्या बोलूं, पिछले साल भी यही बोला था, फिर मैं बोला कि मैं लोगों को मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा हूं। मनोरंजन नहीं होगा तो नहीं होगा, मनोरंजन के लिए नहीं, हृदय की शुद्धिकरण के लिए, आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, एक सेवक के सेवकों के सेवक के रूप में हमें सिर्फ वही चीज दोहराते रहना है। दोहराते रहना मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बोलते रहना है, नहीं, अपना पूरा शक्ति डालना है, अपना पूरा प्रयास करो, उसके बाद सिर्फ चमत्कार देखते रहो। क्या क्या करते हैं भगवान, अद्भुत चमत्कार होगा, सिर्फ देख के आनंद लो, यस कृष्ण इज देयर। ऑफ कोर्स मैं सोचा भी नहीं था, मैं सोचा इतनी चर्चा करूंगा पर शुरुआत कुछ और से हो गया, पर जो भी है सोचा एटलीस्ट कम से कम सब भक्तों को आपस में आ रहे हैं। आज के दिन कृष्ण का गुणगान होना चाहिए, आज के दिन भक्तों को, भक्तों के साथ संग होकर एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें भूल नहीं जाना चाहिए। ये जो दिन है ये अच्छे दिन है हमको याद दिलाने के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों यहां इस संसार में आए हैं, इस संस्था में क्यों आए हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोग कभी कई सारे चीजों में फंस जाते हैं और फंसने के कारण नहीं, मैं भक्तों का संग नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, यही एक आश्रय हमारे लिए। और याद दिलाना, हम लोग को बार बार याद दिलाना हम अपने आप को भी कि लक्ष्य ये है। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय साल काल सर्प पटली विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र आदिश्य कीटायते यत कारुण्य कटाक्ष वैभव वाम तम गौरमेव स्तुम। चैतन्य महाप्रभु जिसको कृपा हुई है, कैवल्यम नरकायते, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, प्रभु इस बीमारी से मुक्त करो, इससे मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त, मुक्ति नहीं चाहिए हमको, जिस स्थिति में भी रखे हो अच्छा है प्रभु, सुधारने के लिए यही सही है मेरे लिए, चलेगा। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, हमें स्वर्ग लोक की इच्छा नहीं है, इस संसार में रहने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। समझ लेना चाहिए जो भी चीज कृष्ण से संपर्क में नहीं है वो कोई भोग करने की योग्य नहीं है, मेरे लिए नहीं है वो। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते। दुर्दांतेन्द्रिय, इस इंद्रियों को काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है, दुर्दान बड़ा मुश्किल है, पर काल सर्प पटली जैसा सांपों के दांत निकाल दे तो बच्चे भी वो सांप के साथ ऐसा खेलते फेंकते, इस तरह से ये इंद्रियां जिसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है आसानी से नियंत्रित हो जाता है अगर ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। विश्वम पूर्ण सुखायते, फिर नरक में डालो या स्वर्ग में डालो या किसी अपवर्ग में डालो, समदर्शी ना, जहां तक वो सेवा है कहीं भी हूं ठीक ठीक है। विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते, इस संसार में कोई भी पदवी, ब्रह्मा जी या इंद्र की इंद्र या ब्रह्मा जी की पदवी भी, विधि या महेंद्र आदिश्च कीटायते, कीड़े के समान, तो यद कारुण्य किसको हो सकता है? ये जो पागल हो गया है, जिसको चैतन्य महाप्रभु का कृपा कटाक्ष पड़ गया है, तो वही कृष्ण भगवान जो 5000 साल जन्म लिए, 500 साल पहले एक भक्त के रूप में आकर अपने जीवन के द्वारा खुद दिखाया कि कैसे हमको भक्ति करनी है। और वो 500 साल पहले दिखाया हुआ कलयुग के कारण सकाले ने महता योगो नष्ट, वो भी नष्ट हो गया था। उसको इन महान आचार्यों ने इस परंपरा में जागृत किया, वो भी सब नष्ट हो गया था। उसको श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसी सरल तरीके से दिया है हमारे जीवन में कि आप कहीं भी हो, स्थाने स्थित इस चीज को अपनाओगे तो अपने हृदय में कृष्ण जन्म ले सकते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में भगवान अवतरित हो सकते हैं। तो ये सीक्रेट, ये जो बड़ा रहस्य है, ये गुह्यतम रहस्य है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा, हाथ में आकर अगर अब कीर्तन करेंगे संघ में आकर तो वहां निश्चित रूप से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो इस तरह से शाम को बाद में चर्चा करेंगे और कुछ दूसरे शाम का मैं सोच रहा हूं, शाम कृष्णा द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, गोपीनाथ मंदिर में हमारा सीरीज चला था और मुझे बोलने को कहा गया था कि सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक, तो ये हम चर्चा करेंगे शाम को, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, धन्यवाद, हरे कृष्ण।